ओम शांति। एक बार प्यार से सभी बोले ओम शांति, जोर से ओम शांति। बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं, पक्का? एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, एक बार खड़े हो जाएं सभी। जब मैं आपको ये कहूं कि परम धाम मतलब वो आत्माओं का घर है, तब आपको हाथ ऊपर करने हैं। फिर जब मैं आपको कहूं सतयुग, तब आपको हाथ सामने करने हैं। फिर मैं आपको कहूं कलयुग, तो आपको हाथ नीचे करने हैं। क्लियर? पहले डेमो लेते हैं, ठीक है? परम धाम, दोनों हाथ ऊपर। हाँ, सतयुग, दोनों हाथ सामने सामने। हाँ, कलयुग मतलब नीचे। एक बार फिर डेमो लेते हैं, फिर गेम करते हैं। हाँ, परम धाम ऊपर, सतयुग सामने, कलयुग नीचे। अब स्पीड से, परम धाम सतयुग कलयुग, परम धाम सतयुग कलयुग, परम धाम सतयुग कलयुग। अब ऊपर नीचे, ठीक है? कुछ भी, कलयुग आउट माइंडसेट था। फिर एक बार सतयुग, हाँ फिर भी आउट माइंडसेट था। थोड़ा सा, दिस इज ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, कि हमें जो सुनने की आदत, करने की आदत विद इन 30 सेकेंड्स पड़ गए, उससे हम यूज्ड टू हो गए। फिर एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग, परम धाम सतयुग कलयुग, कलयुग फिर भी आउट। एक बार फिर, कोई आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कलयुग फिर भी आउट, हिल तो गए। सतयुग आउट, सतयुग सामने था। छोटी छोटी बातें हमने कितनी बार पक्की की, इट्स अ गेम, फिर भी हम भूल जाते हैं। तो आज का जो विषय है वो तो बहुत ही जागृति का है, तो बहुत सुंदर विषय की शुरुआत करते हैं। आप सबका आभार, बैठ सकते हैं आप। थैंक यू। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित विशेषज्ञ और उपस्थित सभी जागृत साथी भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वह केवल खेती या उत्पादन का विषय नहीं है, बल्कि यह मन, प्रकृति और चेतना के गहरे संबंध की कहानी है। और हमारा विषय है आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन। यह विषय हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या खेती केवल भूमि पर होती है, या हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण में भी होती है? जब किसान का मन शांत, सकारात्मक और प्रकृति के प्रति सम्मान से भरा होता है, तब उसकी खेती केवल अन्न नहीं बल्कि ऊर्जा, संतुलन और जीवन पैदा करती है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मिट्टी में जान है यह एहसास जगाना होगा, मिट्टी में जान है यह एहसास जगाना होगा, खेती को फिर से प्रकृति से जोड़ना होगा, खेती को फिर से प्रकृति से जोड़ना होगा। जब मन में हो शांति और भावों में हो प्यार, तभी खेतों में उगेगा सच्चा जीवन हर बार, सच्चा जीवन हर बार। आज का समय हमें सिखा रहा है कि केवल रासायनिक उर्वरकों से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, ध्यान और प्रकृति के साथ सामंजस्य से भी खेती को समृद्ध किया जा सकता है। शाश्वत योगिक खेती इसका बहुत बड़ा प्रूफ है। इन्हीं गहरे और प्रेरणादायक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है कुछ विशिष्ट अतिथि, जिन्हें हम अनुरोध करेगी कि आप मंच पर मंचासीन होकर हमारे मंच को सम्मानित करें। और हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुनीता पांडे जी, ब्रह्मा कुमार बालासुर उगे भाई जी, भ्राता डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, भ्राता डॉक्टर अवतिंद्र मिश्रा जी और हमारी सम्मानीय राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी जी। आप सभी मेहमानों से अनुरोध है, आप मंच पर स्थान लेकर हमारे मंच को अभिवादित करें। और आप सबसे अनुरोध है, सुंदर करतल ध्वनि से मेहमानों का स्वागत मंच पर करें। सुंदर करतल ध्वनि बजाए, इस तरह की बजाते रहे, देखो वातावरण गूंजता रहेगा। मेहमानों का भी हम उत्साह बढ़ाएं, खुद की श्रवण शक्ति को बढ़ाए और आज के सत्र को आगे बढ़ाए। जहाँ स्नेह, शांति और ज्ञान का संगम हो, वही सच्चा स्वागत और पावन आगमन है। आज का ये अवसर उसी का प्रतीक है। आपका स्वागत हमारे लिए अनमोल है, अनमोल है। सत्र की शुरुआत हम 3 मिनट प्रभु पिता की याद से करेंगे। सबसे विनम्र अनुरोध है, मोबाइल को साइलेंट रखते हुए 3 मिनट परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।
पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए, पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है दुनिया को संवार, कुछ हमको देती है, बिन लिए कुछ भी फल फूल और जल बेहद वो लुटाती है। ऐसे चलते रहिए, अरे ऐसे ही चलते रहिए, आगे ही आगे अब बढ़िए। तत्व की पुकार है दुनिया को संवारिए।
भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का स्थान दिया गया है, अतिथि देवो भव। इसी भावना के साथ हम सम्माननीय अतिथियों का तिलक, बैज और पुष्प के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहनों से विनम्र अनुरोध है, हमारे सम्माननीय मेहमानों को फूलों की खुशबू से महकाएं, आत्मिक स्मृति का तिलक करें और बैज देकर सम्मानित करें। और आप सबसे अनुरोध है, आप अपनी करतल ध्वनि का हमें सुराग देते रहिए, इससे वातावरण महकता रहता है। फूलों की खुशबू से महके ये समा, आपके आने से सजा ही ये जहां। तिलक, बैज और पुष्पों के साथ आज करते हैं हम आपका दिल से अभिनंदन, दिल से अभिनंदन। कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने वाली एक प्रेरणादायक शख्सियत 32 वर्षों से भी अधिक अनुभव के साथ प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण की अग्रणी विशेषज्ञ ऐसी है हमारी डॉक्टर सुनीता टी पांडे। स्वागत करते हैं हम आपका, आप भी करतल ध्वनि से सुनीता जी का स्वागत करें। सुनीता जी का संक्षिप्त परिचय कुछ इस तरह है, आप जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंत नगर की प्रख्यात एग्रोनॉमी प्रोफेसर हैं। आपके पास 32 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। 2021 से 24 तक लगातार फैकल्टी एक्सीलेंस अवार्ड से आप सम्मानित हुई हैं। 2024 में ऋषि पराशर पुरस्कार से भी आपको अलंकृत किया गया है। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण आधारित भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में आप एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन की कार्यकारी सचिव और पंत नगर में प्राकृतिक खेती अनुसंधान कार्यक्रम की समन्वयक हैं। आपने अनेक शोध परियोजनाओं का नेतृत्व किया है और कई विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर कृषि क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। आपका वक्तव्य ही आपके ज्ञान एवं रिसर्च का परिचय है, तो अनुरोध करते हैं डॉक्टर सुनीता पांडे जी से आज के विषय पर अपने विचार विमर्श रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आध्यात्मिकता द्वारा सशक्त किसान और समृद्ध गांव, इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट का ये आज खुला सत्र, प्रथम खुला सत्र का विषय है आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन। तो इस विषय को शुरू करने से पहले मैं मंच पर आसीन हमारे अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी, अनुभवों की अथॉरिटी ब्रह्मा कुमार बालासर उगे भाई, हमारे मध्य उपस्थित अतिथि भ्राता डॉक्टर अतीन्द्र मिश्रा एवं भ्राता सुभाष चंद जी, मंच सचिव ब्रह्मा कुमारी जानकी बहन और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों, आज का विषय मैं इसकी गहराई में जाऊं, मेरे पास 15 मिनट हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि विश्व की एक बहुत ही उम्दा रेटिंग की जाने वाली एक पत्रिका है नेचर, उसके अनुसार आज विश्व में 690 मिलियन लोग भूखे सोते हैं और जो शोध हो रहा है उनकी भूख मिटाने के लिए, जिसके लिए हमारी कृषि सीधे उत्तरदायी है, तो उस पत्रिका ने 1,00,000 रिसर्च पेपर्स का रिव्यू करके ये कंक्लूड किया है कि 95% से ज्यादा शोध की धनराशि जिस तरीके के रिसर्च में जा रही है वो इस भूख को मिटाने वाली नहीं है। तो संसार की इस पत्रिका ने, उम्दा पत्रिका ने, जो फंडिंग एजेंसीज हैं जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये वॉशिंगटन डीसी की फंडिंग एजेंसी है, जर्मन फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ऐसी फंडिंग एजेंसी से गुहार करी है कि अपनी फंडिंग को सकारात्मक और ये भूख मिटाने वाली शोध के लिए फंड करें, जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं, तो पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि कृषि की शोध किस दिशा में हो। जो अभी हम कर रहे हैं उसको तो इस पत्रिका ने चेतावनी दे ही दी है। तो आज का विषय कि आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन, इस जो चुनौती दी है नेचर मैगजीन ने, उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो कृषि है उसको परिवर्तन करने के लिए जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रकृति परिवर्तन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम प्रकृति परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कृषि परिवर्तन असंभव है। और प्रकृति परिवर्तन, जो प्रकृति हमारी सेवा के लिए बनी है, वो इस समय आक्रामक रूप उसने लिया हुआ है। तो इस आक्रामक प्रकृति को हमें सेवा में लेना है, मतलब जो हिंसा से भर गई है। और उसका कारण है क्योंकि हमने हिंसक विधि से खेती की है और अब हमें अहिंसक विधि से खेती करनी है। और अहिंसक विधि से खेती करने की विधा को ही हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती का आधार है अहिंसा से खेती, और जिसके लिए आध्यात्मिकता ही केवल एक संपूर्ण सॉल्यूशन है। आध्यात्मिकता के आधार पर अध्यात्म ही सिखाता है कि अहिंसा कैसे हमारे अंदर जनरेट हो। जब हम अपनी और प्रकृति की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेचर हम कहते हैं। हमें प्रकृति को वही चीज देकर के सेवा करनी है जो हमें भरण पोषण के लिए चाहिए। तो ऐसी प्रकृति बनाने के लिए आध्यात्म ही केवल एक सॉल्यूशन है। मैं थोड़ा एक डेढ़ मिनट में अपना जो पर्सनल अनुभव है पहले वो सुनाऊंगी कि ये चेतना का ज्ञान 2008 में जब मैं प्रथम बार मधुबन आई तो हमको आने से पहले जो ज्ञान मिला इस विश्वविद्यालय से, चेतना का ज्ञान मिला, परम चेतना का ज्ञान मिला, प्रकृति का ज्ञान मिला, प्रकृति पुरुष और परमात्मा के बीच क्या इंटीग्रेशन है और उसको हम कैसे कृषि में यूज कर सकते हैं, उसका ज्ञान मिला। और जाने अनजाने जब प्रथम बार हम 2008 में आए, सीधे हमारे कदम रूरल विंग की तरफ बढ़े। उस समय एक कृषि और रूरल विभाग नहीं था, रूरल डेवलपमेंट विभाग था। और वहां पर राजू भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने शाश्वत यौगिक खेती, जो उसी समय प्रायः शुरू हुआ था विषय विंग में, उसका परिचय दिया। तो उस परिचय का बहुत ही सहयोग मिला प्रकृति परिवर्तन के चिंतन करने पर, और निरंतर वो चिंतन बढ़ता गया, गहराता गया। और हमने कालांतर में महसूस किया अपनी प्रकृति के अंदर परिवर्तन की अनुभूति हुई। और उस अनुभूति से हमारा पूरा जो माइंडसेट था, क्योंकि अध्यात्म का परिचय मिला था तो माइंडसेट पूरा चेंज हुआ। हमारे रिसर्च का पूरा डोमेन चेंज हुआ कि अहिंसक खेती की तरफ कैसे बढ़ा जाए, जिसको कि हम शाश्वत यौगिक खेती के माध्यम से हमने इस विश्वविद्यालय में समझा था। क्योंकि आज अगर हम देखें वर्तमान में प्रकृति, जिसका कि मानव ने दोहन ही नहीं किया वरन लंबे समय से शोषण किया है, प्रकृति पति द्वारा प्रदत्त प्रकृति व उसको अक्षुण बनाए रखने हेतु जो प्राकृतिक नियम है उसका अंधाधुंध उल्लंघन किया है। परिणाम स्वरूप प्रकृति आक्रामक रूप में खड़ी हुई है, जिसके विभिन्न स्वरूप हमारे सामने हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, घटता जल स्तर, अनियमित वर्षा, दूषित प्राकृतिक संसाधन, परिणाम स्वरूप दूषित अन्न और दूषित शरीरों का निर्माण, बीमारियों की अतिथि, एक विशेष सर्किल में मानव फंसा हुआ है। अब समाधान ही नहीं, स्थायी समाधान की महती आवश्यकता है और आज का विषय इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चेतना के आधार से प्रकृति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन से कृषि परिवर्तन, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारा मन या माइंडसेट या बिहेवियरल चेंजेस जो हमारे अंदर आते हैं उसके लिए अध्यात्म ही एक टूल है और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो है राजयोग। तो राजयोग जो हमारा माइंडसेट चेंज करता है और उसके उपरांत हम उन सभी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं और उसमें हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं किसान के दृष्टिकोण से, जो कि जब हम राजयोग करते हैं, अहिंसक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, डबल अहिंसक बाबा बनाता है, तो हमारी जो किसान की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो स्वस्थ, सुरक्षित, स्वास्थ्य, शाश्वत और सतत रूप से खाद्य व पोषण उत्पन्न करने हेतु सक्षम होती हैं। और इसी क्रम में भारत सरकार एक अति महत्वपूर्ण नेशनल एजेंडे पर कार्यरत है, प्राकृतिक खेती। देशव्यापी इस एजेंडे को लगभग प्रत्येक राज्य में लोकप्रिय बनाने हेतु शोध, प्रशिक्षण व प्रसार के अतिरिक्त कई अन्य डायमेंशंस जैसे प्राकृतिक बीज उत्पादन, क्लस्टर फॉर्मेशन, सब्सिडीज, कृषि रसायनों की खपत घटाना आदि विषयों पर इंटीग्रेटेड रूप से काम किया जा रहा है। वर्तमान परिपेक्ष में जो परिस्थिति खड़ी हुई है, फर्टिलाइजर तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों जैसे प्रमुख कृषि निवेशों का आयात, जैसे फर्टिलाइजर और अनेक और एग्रोकेमिकल्स, ये महंगा ही नहीं अपितु बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज नेचुरल फार्मिंग वैज्ञानिक विधि से करा जाए ये एकमात्र समाधान स्पष्ट दिख रहा है। वैज्ञानिक आधारित नेचुरल फार्मिंग एक सस्ती, टिकाऊ, सुरक्षित तथा शाश्वत खेती की विधि है। हमें खेती और कृषि में भूमि को, पौधों को प्रकृति की सेवा हेतु वही देना है जो हम अपने भरण पोषण के लिए चाहते हैं, और वो क्या है? प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। जो हमारा निवेश हो, जो हमारे इनपुट हो, वो उसकी सीमा इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, और वो सब कुछ संपूर्ण रूप से वृक्ष आयुर्वेद में मिलता है। हमारी भारत सरकार एक उपक्रम चलाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम मोदीपुरम में, तो उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है जब, और प्राकृतिक खेती का शोध की जिम्मेवारी पूरे देश में उसी इंस्टीट्यूट को मिली हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम। उसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो आध्यात्मिकता की। और मुझे अपने विश्वविद्यालय से यहां पर एक प्रपोजल रखना है कि हमें उस इंस्टीट्यूट से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च से, जो कि इंटीग्रेशन की बात करता है, उसमें अध्यात्म का इंटीग्रेशन का प्रपोजल यहां से जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती की पूरी रिसर्च की जिम्मेवारी उनकी है और उसका आधार आध्यात्मिकता है और अहिंसा है। अब मैं बहुत जल्दी से जो हम अपने विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं इस दिशा में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ये जो हमारा आज का विषय है, आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन, तो इसमें जितने आप ये संस्थान देख रहे हैं, जिसमें कि हमारे कुछ संस्थान हमारे नॉलेज पार्टनर हैं, जैसे हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय नॉलेज पार्टनर है क्योंकि यहां से उस शिक्षा का आधार मिला है। हमारा IKS उसमें हमें स्पॉन्सर करता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। उत्तराखंड सरकार हमको स्पॉन्सर कर रही है, भारत एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हमको स्पॉन्सर कर रही है, तो इस प्रकार से ये हमारे सभी साथी हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए। और प्रकृति की रक्षा किए बगैर हमारी रक्षा हो नहीं सकती, प्रकृति रक्षिते रक्षिता, और इसके लिए हमारे पास हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति को कैसे हम अहिंसक भाव से उसकी सेवा करें तो वो हमारी सेवा के लिए तत्पर है। हम एक दाना डालते हैं, वो हमें हजार दाने देती है। और उसके जो हमारे कर्णधार हैं, उनके नामों से आप लोगों को सबको परिचित होना चाहिए, ऋषि पराशर, कौटिल्य, वारामिरा, कश्यप, सुरपाल, सरंगधार एंड चक्रपाणि मिश्रा और कई अनेक, क्योंकि ये कुछ मुख्य जिनको हमने अभी तक पढ़ा है और जिनका की ट्रांसलेशन हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मौजूद है, किसको भी मिल सकता है, जो चाहे यहाँ पर सबको मिल सकता है। तो ऐसा वृक्ष आयुर्वेद जिसकी आधार अहिंसक निवेश तैयार करना और अहिंसक खेती को बढ़ावा देना, तो ऐसा वृक्ष आयुर्वेद हमारे भारतवर्ष के ही पास है। और कौटिल्य ने हमको बताया था, अगर हम कौटिल्य के पन्ने पलट के देखें कि कृषि एक व्यवसाय है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी आपको, यहाँ हम लोग सब ये बात कहते हैं कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, जो कि आंशिक सत्य है, ये संपूर्ण सत्य नहीं है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। हम कभी भी खेतीहर नहीं थे। कौटिल्य ने साफ लिखा है कि हम व्यवसाय करते थे, कृषि का व्यवसाय करते थे, खेतीहर हमको हमारे देश में अनेकों प्रकार के आक्रमण हुए, हमारे देश की कृषि की रीति बदली, नीति बदली, और उसके तहत हम खेतीहर बने, हमें खेतीहर बनाया गया, नहीं तो हम उद्यमिता कृषि प्रधान देश थे। और हमारा निर्यात इस बात का साक्षी है कि हमारा निर्यात क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली विश्व में सबसे ज्यादा था। 1800 सदी तक, एडी तक, हम जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा हमारे पास था, 35% के बीच, और हम निर्यात करते थे, बहुत सारा निर्यात करते थे। और हमारा कृषक जो है वो संपन्न था, समृद्ध था, इम्पावर था, और समाज के विभिन्न वर्गों को इम्पावर करता था। और आज हम कृषक को इम्पावर करने की बात कह रहे हैं। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हमारे धरती पर, भारत की धरती के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ऋषि मुनियों द्वारा लिखे हुए, जिसमें उस सारी प्राकृतिक खेती और उसमें योग का समावेश भी है संपूर्ण। आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे तो भाव और भावना का आपको पैरा जो मेटाफिजिकल और मेटाफिजिकल एनर्जी का इसमें सबको परिचय मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारी टेक्नोलॉजीज उसमें हैं, जो टेक्नोलॉजीज के हमारे अब नाम हम शायद जानते भी नहीं है, लेकिन अब जब से ये प्राकृतिक खेती का एजेंडा हमारे देश का एजेंडा बना है तो उसमें हम अब जानने लगे हैं। हमारे विद्यार्थी भूमि निरूपणम, बीजोक्ति विधि, पादप विवीक्षा, रूपना विधानम, निषेचना विधि, पोषणा विधि, द्रुम रक्षा, तरु चिकित्सा, निवासन्ना थरु शुभ अशुभ लक्षणम, तरु महिमा, उपवन प्रक्रिया, चित्तीकरणम मीन्स एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी, डकार गालम पानी के स्रोतों का पता करना। तो इस प्रकार का हमारा बड़ा ऊंचा ज्ञान है जिस पर हमारा विश्वविद्यालय, क्योंकि वहां पर एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन का कार्यालय है, मुख्यालय है, और हमें उसमें सेवा करने का मौका मिला है। तो हम उस पर काम शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके कुछ एक पहलू पर मैं केवल आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगी, विषय बहुत गहन है, जिस पर हमारे विश्वविद्यालय ने पहल की है, और वो है हर्बल कुणाप जल। कुणाप जल विश्व का पहला तरल जैविक या प्राकृतिक, आप खाद कह सकते हैं, मैन्योर कह सकते हैं, कुछ भी कहें, दुनिया का लिए गिफ्ट भारतवर्ष ने दिया है। और ये जो हमारी सॉलिड, जैसे FYM गोबर की सड़ी खाद डालते हैं, उसका कहीं नामो निशान नहीं है हमारे कृषि के इतिहास में। गोबर की सड़ी खाद का नामो निशान नहीं है। मैंने 10,000 बरस का इतिहास को खंगाला है, कहीं नहीं मिलता। तरल खादें मिलती हैं, हर्बल कुणप जल मिलता है, जिसको कालांतर में फिर मॉडिफाई किया वैज्ञानिकों ने हर्बल कुणप जल के रूप में, उसका मिलता है, लेकिन गोबर की सड़ी खाद का कहीं है ही नहीं। 400 BC में ऋषि पराशर ने कृषि पराशर लिखी, कहीं गोबर की खाद का, सड़ी खाद का, गोबर का उपयोग बहुत है लेकिन सड़ी खाद का कहीं भी जिक्र तक नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खाद है, इसका पूरा इतिहास है कुणप जल का, इसकी जर्नी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से दिखाई है कि 1000 बरस पहले ये जो कुणप जल बना था और उसका अंतिम उल्लेख 1725 एडी में शिव तत्व रत्नाकर के माध्यम से मिलता है, उसके बाद ये गायब है हमारे करिकुलम से, उसके बाद कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता और अब उसको इमर्ज किया है। तो इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं, मैं बहुत गहनता में नहीं जाऊंगी, मैं केवल एक शब्द में कहूंगी इस पूरी स्लाइड को कि वो बहुत ही पोषक और प्लांट प्रोटेक्शन और प्लांट न्यूट्रिशन के लिए एक उम्दा स्रोत है। भूमि और जमीन को उर्वर बनाने के लिए, उसका सुपोषण करने के लिए, कई सारी बीमारियों को से पौधों को बचाने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सब ही इसमें उपलब्ध हैं और इसको हम कालांतर में हमने हर्बल कुणप जल के रूप में इसको परिवर्तित करके इसको अब कई स्टेट्स में यूज किया जा रहा है। हमारे जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो भी इसकी संस्तुति करता है अपने कृषकों के बीच में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हमें प्रकृति से क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो हमें देना पड़ेगा। हमें प्रकृति, हमको कभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्ट नहीं चाहिए खाने पीने के लिए। तो हमें देखिए आप, ये सारी लिस्ट है उन चीजों की जो हमें प्रकृति को सेवा के लिए वृक्ष आयुर्वेद में लिखी है, जैसे इंडियन टेम्परेट ट्री, ये एंटीमाइक, और ये सब वृक्ष आयुर्वेद से लिया गया साहित्य है, ये एंटी माइक्रोबियल है। बेल जो है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। ब्रेसिका, सरसों जो है एंटी फंगल निमेटिसाइडल कैपेसिटी रखता है। अरनी जो है एंटी फंगल एंटी वायरल है। गंभारी, ये भी कई बीमारियों के लिए है। पंचमूल, पांच पेड़ों की जड़ जिनको हम आगे देखेंगे वो है हल्दी, विदंगा, त्रिफला, हींग, फिग, या जिसको हम बनियन भी, बनियन फिग कहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे वृक्ष आयुर्वेद में लिखी हुई हैं, वर्णित हैं इनका उपयोग। ये पांच चीजें ये हैं, मुलैठी जिनका पंचमूल बनता है, मुलैठी, गंभारी, महुआ, सोनपाठा, काली मिर्च, और जो एक धोबी लोग यूज करते हैं ना, जो निशान लगाते हैं कपड़े में, वो भी एक फल पेड़ से आता है, उसका यूज। और इनकी सबकी, किसी की इंसेक्टिसाइडल वैल्यू है, किसी की पेस्टिसाइडल, हर एंटीवायरल, हर वैल्यू इसमें लिखी हुई है, और ये सब हमने वृक्ष आयुर्वेद से लिया है। इस पर हमारा विश्वविद्यालय कार्यरत है। तो ये सारे देखिए प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड ना, पोडाल, बहरा, हरर, ये सारी चीजें, और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी। कई लोग कहते हैं कि हिंसा है वृक्ष आयुर्वेद में, अगर किसी मरे जानवर का, जो पहले जानवर ज्यादा पालते थे, उनका कोई पार्ट यूज करके, उनको यूज करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हिंसा नहीं है। आज गाय भी मरती है तो हम गड्ढा खोद के गाड़ के उसके ऊपर पेड़ लगा देते हैं, वो हिंसा नहीं है। तो वृक्ष आयुर्वेद में एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है। ये एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करे गए हैं, घी है, हनी है, हॉर्स हेयर है, तो ये सारी चीजें जो है, मैरो है, मिल्क है, दूध का बहुत उपयोग है वृक्ष आयुर्वेद में। तो इस प्रकार से वैलिडेशन ट्रायल्स हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल विंग ऑफ राज्योग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन और कई और संस्थाएं भी इस वैलिडेशन के कार्य में लगी हुई हैं। और इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर वृक्ष आयुर्वेद रिसर्च एंड ट्रेनिंग अपने आप में अकेला विश्वविद्यालय, अकेला रिसर्च संस्थान और ट्रेनिंग संस्थान है जो वृक्ष आयुर्वेद पर आधारित चीजों को, इनपुट्स को बना रहा है, प्रयोग कर रहा है और प्रकृति की सेवा कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ 15 जनवरी 2024 को इसकी स्थापना हो गई थी इस सेंटर की, और काम जारी है। और इस प्रकार ये सेंटर है, इसमें फील्ड पर भी काम है, ट्रेनिंग्स हैं, लैब्स हैं हमारे पास, तो ये हर प्रकार के हम विद्यार्थी भी तैयार कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। और साइंटिफिक वैलिडेशन ट्रायल्स जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी टीम है, ये शुरू की टीम है, छोटी थी, लेकिन आज हमारी टीम ये है। हमारे पास हर प्रकार के साइंटिस्ट इस कार्य में जुटे हुए हैं, जिसमें एग्रोनॉमिस्ट, सॉयल साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, और ये हमारी बच्चों की टीम है जो रिसर्च इसी पर, इन्हीं प्रोडक्ट्स पर, कि कैसे हम प्रकृति को वही चीज दें जो हमें चाहिए। अलग अलग प्रकार के हर्बल कुणप जल बनाना, कम एन नंबर ऑफ हर्बल कुणप जल वी कैन मेक, हम कितने प्रकार के हर्बल कुणप जल बना के उनका पेटेंट भी कर सकते हैं उनका हम पब्लिकेशन कर सकते हैं। बच्चों को और क्या चाहिए, पेटेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, पब्लिकेशन चाहिए। तो तीनों चीजें उसको उनको हम इससे दिलवाते हैं इस विधा से। और जहां बच्चे जा रहे हैं, ये आप जो बच्चे देख रहे हैं ये सब पढ़ते पढ़ते कई अवार्ड्स ले चुके हैं, ये सब हमारे स्टूडेंट्स से जिनकी थीसिस जमा हो रही है, जमा कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, जहां पेपर पढ़ने जाते हैं, ये सारे उनके अवार्ड्स हैं जो आप देख रहे होंगे। बहुत क्लैरिटी शायद नहीं आ पा रही है, लेकिन ये सब राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के अवार्ड्स बच्चे जीत के ला रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं, हर्बल कुणप जल पर काम कर रहे हैं। एक ही डायमेंशन उठाई है अभी, हर्बल कुणप जल, उसकी सारी एनालिसिस कर रहे करी गई है वहां विश्वविद्यालय में, उसकी पूरी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की किस प्रकार चेंज हो रही है, उसकी मेटाजिनोमिक्स, तो वो सारी बातें, अलग अलग प्रकार के फॉर्मुलेशंस तैयार करना। अभी हमने 6 पेटेंट के लिए डाले हुए हैं फॉर्मुलेशंस। तो इस प्रकार ये काम जारी है, सीड को, बीज की क्षमता को बढ़ाना, भूमि की क्षमता को बढ़ाना, उसका सुपोषण करना, तो इस प्रकार से। और अलग अलग फसलों पर काम करना, हमने गेहूं पर काम किया, उसके बीजों को उन्नत किया, उसके हर्बल कुनप जल से ट्रीट करके। इसी प्रकार से चने पर काम किया, सरसों पे काम किया, तो सभी फसलों पर हर्बल कुणप जल का प्रकार चेंज कर करके। जैसे हमने पहाड़ों पर एक प्रोजेक्ट किया, वहां पर बिच्छू घास होती है एक, है ना, हेम्प बिच्छू घास, और वो इतनी प्रभावशाली घास है कि उसमें 27% तो प्रोटीन ही होता है, और वहां वो खरपतवार के जैसे उगती है, तो उसका हमने हर्बल कुणप जल बनाया और बहुत ही बेहतरीन हमको रिजल्ट मिले मस्टर्ड में उससे, कि बिल्कुल केमिकल के बराबर एट पार हमको, और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो तो केमिकल से ज्यादा ऐसा हमको मिला। उसके अलावा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो हर्बल कुणप जल की, वो जांची गई, परखी गई, बायोकेमिकल एनालिसिस करी गई, सीड के लिए उसको कैसे हम पावरफुल सीड बनाए, ये सब किया गया। उसके बहुत डेटा सामने आप देख रहे हैं, जैसे ये लास्ट में देखिए आप, 100% कंट्रोल है जो हमने यूकेलिप्टस से कुणप जल बनाया। लास्ट कॉलम में अगर आप देखें, किसी में 98% कंट्रोल है, किसी में 95, और जो जिसमें कुछ नहीं किया तो केवल 8.5% फंगस का कंट्रोल हुआ, बाकी जगह 100% से लेकर के और 95% तक। फिर हमने आलू की फसल पर काम किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लीची की फसल पर प्लांट मटेरियल की मोर्टेलिटी कम करने के लिए काम किया तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए, उसका सारा फ्लेवोनॉइड्स, प्रोटीन, फिनॉल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सारे पैरामीटर्स हमने चेक किए। उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स पर बहुत अच्छे, उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बढ़ गए, उस प्रकार से भी रिजल्ट आए। ग्लैडुलस जो कि बहुत कॉमर्शियल क्रॉप है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये विद्यार्थियों के द्वारा, ये मेटाजिनोमिक्स, कितने प्रकार के बैक्टीरिया आइसोलेट हो रहे हैं हर्बल कुनप जल से, तो वो हमने काम किया। इन नटशेल ये आप देख रहे हैं, ये 25 शोध, 25 बच्चों के, एमएससी और पीएचडी के बच्चों का आपको ये रिसर्च ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, कुछ बच्चे कर रहे हैं। ये 25 हमारे आपके सामने रखे हैं, क्योंकि इतना शॉर्ट समय में सबको बताना मुश्किल है, तो ये 25 हैं, और उसके आधार पर ये हमारे पब्लिकेशंस हैं। ये केवल मेरे 2020 से और 2026 तक के ये साइंटिफिक पब्लिकेशन है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी जर्नल्स में, नेशनली रेप्यूटेड जर्नल्स में छपे हैं ये सारे पब्लिकेशंस इस प्राकृतिक खेती से, और जिसमें बहुत सारी क्रॉप आपके सामने है। डिमॉन्स्ट्रेशंस भी करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग्स देते हैं, ये हमारा खुद फार्म के ये सारे फोटोग्राफ्स हैं। समय का अभाव है, मैं केवल इसको रन करूंगी। ये सारी क्रॉप केवल और केवल हर्बल कुनप जल से, ये मॉडल है पूरा वीट और चने के साथ, और 5 क्रॉप इकट्ठे लगाई थी उसका मॉडल है। ये तुलसी का है, ये धान के अलग अलग वर्षों के मॉडल है, ये हमारा फार्म है। तो ये इस प्रकार से, ये बहुत ही वृक्ष आयुर्वेद, क्योंकि उसमें आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो मेटाफिजिकल एनर्जी है, जो योग है, वो भी समाहित ही होता है। तो ये सारी फोटोग्राफ्स हैं, तो समय का अभाव है, तो इस कारण मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। बस आप, ये हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे, कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो मैं अभी यहाँ पर अपना भाषण समाप्त करती हूँ। और मैं आशा करूंगी कि जो हमारा टारगेट है कि हम योग के प्रयोग वृक्ष आयुर्वेद को लेते हुए साथ करके ही हम प्रकृति को चेंज करेंगे, और जब प्रकृति चेंज होगी तो हमारी कृषि न चेंज हो, ऐसा हो नहीं सकता। ओम शांति। ज्ञान सागर को यदि आप ये कहे 15 मिनट में कह जाए तो इम्पॉसिबल है। इतने साल का अनुभव स्वयं का, इतना खुद का रिसर्च और वृक्ष आयुर्वेद पे जो उनकी मास्टरी और रिसर्च हमने देखी, वाकई ही बहुत बहुत सराहनीय है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। और लग रहा था कि और डेप्थ में जाए, और डिटेल में जाए, और जिनका ये विषय है उनको तो और ही क्यूरियोसिटी जागती है कि किस तरह उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि खत परवार की तरह जो ग्रास पहाड़ों पे उगती है और उसमें उन्होंने क्या काम किया है। ऐसे तो कई सारे काम आपने किए हैं, अपने छात्रों के द्वारा रिसर्च किए हैं, तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो आपके सामने जीते जागते शाश्वत योगी खेती के एम्बोडीमेंट हैं, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगी, मिट्टी में जब जुड़ती है आत्मा की शक्ति, मिट्टी में जब जुड़ती है आत्मा की शक्ति, तब खेती बनती है समृद्धि की भक्ति। ऐसे एक विभूति से हम आपको मिलवाती हैं, और वो विभूति है इस संस्थान के ब्रह्मा कुमार भ्राता बालासोर उगे भाई जी। आप इचलकरण जी महाराष्ट्र के एक प्रगतिशील किसान एवं योगी खेती के प्रखर वक्ता हैं। 2001 से राजयोग का अभ्यास करते हुए 2003 से आपने खेती में आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा एक नई दिशा दी। ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ मिलकर आपने योगी खेती की शुरुआत की और इसे जन जन तक पहुंचाया। आप 12 कृषि विश्वविद्यालय एवं 20 कृषि महाविद्यालयों में अपने अनुभव साझा कर चुके हैं, साथ ही पूसा दिल्ली और विज्ञान भवन जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आपने पूरे भारत में हजारों किसानों को प्रशिक्षित कर इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाने हेतु प्रेरित किया है। अभी हम सुनते हैं उनके अनुभव युक्त अनुभव। हमारे हर प्रवक्ता से हम निवेदन करते हैं समय मर्यादा में अपने अनुभवों को समेटने का प्रयास करें। सालों का अनुभव मिनटों में तो नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन आप उस अनुभवों से स्पर्श कराएं जो आपकी कुछ चंद मिनट यहाँ बैठे हुए कईयों की कार्य पद्धति को बदल दे। आदरणीय बालासोर उगे भाई जी।
ओम शांति। सम्मान्य व्यासपीठ और उपस्थित सभी को ब्रह्मा कुमारी से मिले हुए कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, क्योंकि आज आपको एक नया परिचय मिला जो अजर अमर अविनाशी है, और उससे उसके परिचय से ही आज का प्रोग्राम होने जा रहा है कि आत्मचेतना से कृषि में परिवर्तन। आप सबको आज परिचय मिला कि हम सब शरीर नहीं, परंतु शरीर को चलाने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा है जिसको आत्मा कहते हैं। जीव, प्राण, नूर, स्प्रिट, सोल, नाम अनेक है, और वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, अजर अमर अविनाशी है। और अगर ऐसा आपको अपना परिचय खुद को मिला कि ना मैं कभी मरूंगी, ना मुझे कोई जला सकता है, तो ये बहुत अपने लिए खुशी की बात है। और उस आत्मा का स्वधर्म है शांति, प्रेम, आनंद, जिसके लिए हम भटक रहे हैं भौतिक साधनों के पीछे। हम किसान भी उसी में से एक थे। जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य था, लेकिन पैसा कमाते कमाते जब जीवन में निराशा, तनाव आता है, तो हर एक अपने हिसाब से शांति को ढूंढने का प्रयास करता है। और हमारा संपर्क 2001 में ब्रह्मा कुमारी से आया, वो मेरा जन्मदिन था, जिस दिन मेरा देह का परिचय खत्म हो गया और मेरा असली परिचय मुझे मिला कि मैं एक आत्मा हूं। आत्मा की शक्ति को रियलाइज करना होता है, दिखाने की ताकत नहीं होती है। बात आती है खेती की, आत्म चेतना से खुशी में परिवर्तन। जब इस बात को आप रियलाइज करोगे, यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कृषि साइंटिस्ट भी आए, कृषि अधिकारी भी आए हैं, लेकिन जब आत्मचेतना की अनुभूति होती है तो सारा विज्ञान फेल हो जाता है। कृषि में भी हमने वही अनुभव किया। नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ने का बहुत प्रयास था, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ना हमारे सामने एक बड़ा आह्वान था। मैं प्रैक्टिकल की बात करूंगा। योग से सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मैंने इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया केवल E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मेरे जीवन में कभी काम में नहीं आया। लेकिन उन्होंने आगे चल के जो बताया है, अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, कोई भी असंभव नहीं होगा। और उन्होंने आगे जाके इस बात को स्पष्ट किया है, जिस समय साइंस समाप्ति की ओर जाएगा उस समय केवल आध्यात्मिकता काम करेगी। और उसी के लिए को आज हम खेती में जो प्रयोग कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है, वो आध्यात्मिकता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उससे हमारा उत्पादन, न केवल उत्पादन बढ़ा है परंतु गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ रहा है। अध्यात्म और विज्ञान, विज्ञान की बात तो डॉक्टर सुनीता पांडे जी ने बताई, हर्बल कुनाब जल की बातें की। शुरू में हमने हर्बल कुनाब जल यूज किया, लेकिन किसान अपने जुगाड़ को ही यूज करना पसंद करता है। हर्बल कुनाब जल में बहुत सारी बातें बताई दीदी ने, हरहड़ बेहड़ आम किसान को पॉसिबल नहीं है। मेरे सामने एक ही लक्ष्य था, हमारे कृषि अधिकारी ने बताया था सॉइल डेफिनेशन। जमीन में 45% खनिज पदार्थ होते हैं, 25% हवा होती है, 25% पानी होता है, 5% कार्बन होता है। और हमारी सरकार ने जब सॉइल हेल्थ कार्ड निकालने के लिए कहा तो हमने देखा उसमें नहीं था ऑर्गेनिक कार्बन, केवल 0.3 से 4%। हमने सोचा जिस धरती की उर्वरक शक्ति 10% से भी कम हो गई है, क्या अधिकार है मुझे कि उनसे प्रोडक्शन ज्यादा उत्पादन लेने का। पहले मेरा फर्ज था कि उस धरती माँ की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना, और तब हमने हर्बल कुनाब जल जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करना शुरू किया। गोबर की खाद का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जानवर किसके पास है? गोबर चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन जानवर नहीं पालना चाहते हैं। तो एक तौली गोबर में हम लोग बेसल डोज कैसे बनाते हैं उसकी विधि आपके पास जो छोटी वाली पॉकेट डायरी मिली है, किताब मिली, उसमें लिखा हुआ है। एक टॉली गोबर मतलब 2 से 2.5 टन गोबर में हम लोग 1 एकड़ का पूरा 1 साल का खाद बनाते हैं बेसल डोज के रूप में। उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। बेसल डोज के साथ हर्बल कुनाब जल भी यूज करते हैं। वृक्ष आयुर्वेद साधारण ग्रंथ नहीं है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व में जितनी यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो रिसर्च नहीं हुई है वो ऋषि सुरपाल जी ने 1000 साल पहले करके रखी है। उसमें नेचुरल यूरिया बनाने की विधि बताई है, नेचुरल डीएपी बनाने की विधि बताई है। नाम ये नहीं है नेचुरल यूरिया और नेचुरल डीएपी, लेकिन हमने अपने जुगाड़ के रूप में उसको नाम दिया नेचुरल यूरिया, नेचुरल डीएपी, जिसमें प्रोटीन की मात्रा को यूज करने के लिए कहा है। कई सारे लोग कई सारी विधियां बताते हैं, लेकिन हम लोग साल में एक बार 300 से 400 किलो बेसल डोज को यूज करते हैं और 15 दिन में एक बार। फसल की ग्रोथ अगर अच्छी चाहिए तो नेचुरल यूरिया बनाते हैं, जिसमें हम लोग छाछ गुड़ और गोमूत्र का यूज करते हैं, जिससे जमीन में ह्यूमस बढ़ता है, फसल की ग्रोथ बढ़ती है। और दूसरी बात, फसल में अगर अनाज भरने का समय होता है तो हम नेचुरल डीएपी बना के छोड़ते हैं। केवल 1-2 किलो सोयाबीन पीस के लेते हैं। पहले तो दीदी ने बताया था हमको कि उसको रात भर भिगो के ले, दूसरे दिन मिक्सर में पीस के ले। मैंने कहा किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेबर प्रॉब्लम, दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहे है, उसको कैसे कम करें, और ये भिगो के रखना पीस के लेना हमारे लिए संभव नहीं था। तीसरा प्रॉब्लम, हमारा तो प्रकृति साथ नहीं दे रहे और तुम्हारा योग क्या काम करेगा। चौथा प्रॉब्लम था अनाज को सही भाव नहीं मिल रहा है और ये अच्छा प्रोडक्शन लेके कौन खरीदेगा, जो मिल रहा है वही खरीदने में तकलीफ हो रही है। और दीदियों ने, ब्रह्मा कुमारी बहने दिखने में साधारण होती है, पता नहीं उसको उनको खेती की कितनी नॉलेज है, लेकिन भगवान ने उनको ऐसा दिव्य बुद्धिमान बनाया है कि हर समस्या का सोल्यूशन कैसे करना है समय समय पर वो हमको गाइड करती है। और इसलिए हमने वो जो नेचुरल डीएपी बनाया वो केवल हम लोग 2 किलो सोयाबीन पीस के लेते हैं, 5-6 किलो देसी गाय का गोबर होता है, जिसमें 1-2 किलो गुड़ डालते हैं, आधा लीटर छाछ डालते हैं, 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन उसमें 2 किलो पिसा हुआ सोया का पाउडर डालते हैं। हम लोग वही करते हैं क्योंकि हमको आत्मनिर्भर किसान बनाने की ट्रेनिंग देनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर कंपोस्टिंग कल्चर में सोया पाउडर डालते हैं, 1 किलो चावल की पाउडर डालते हैं, 15 दिन रखते हैं, 15 दिन बाद डायरेक्ट खेती में छोड़ते हैं। ड्रिप इरिगेशन है तो छान के छोड़ते हैं, ड्रिप नहीं है तो फ्लड से छोड़ देते हैं। एक जबरदस्त खाद है ये, जैसे मनुष्य की बढ़त के लिए शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फसल की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे अमीनो एसिड्स बनते हैं, फसल की ग्रोथ होती है, फसल में अनाज भरने के लिए हेल्प मिलती है, और कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए, फसल में अनाज भरने के लिए आवश्यक मूलद्रव्य उसमें मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं। अब मेडिटेशन की बात आती है, आत्मचेतना, आत्मा की जो शांति है, शक्ति है, प्रेम है, उससे हम प्रकृति को योगदान देते हैं। रोज 10 मिनट ब्रह्मा कुमारी बहनों, हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं देखते, भगवान ने इनके द्वारा सुना है और भगवान की बात है तो माननी पड़ेगी। तो हम लोग 10 मिनट रोज प्रकृति को योगदान देते हैं, शांति का, शक्ति का, प्रेम का, आनंद का, क्योंकि इन्होंने हमको समझ दी थी कि ये शरीर इन तत्वों से बना हुआ है, अगर इन तत्वों में गड़बड़ है तो इसमें भी गड़बड़ आ जाएगी, इससे प्यार करो तो इससे प्यार हो जाएगा, ये ठीक तरह से काम करेगा। तो समझ मिली थी, इसलिए हम प्रकृति से प्यार का रिश्ता जोड़ने के लिए योगदान देना आदि करते थे। जहां मैं खेती करता हूं वहां इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी का ईसी जो है टीडीएस 5.2 है, खेती करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने वहां खेती करना शुरू किया। इस पानी से पानी को चार्ज करते थे, रिजल्ट इतनी अच्छी मिली, जिंदगी में कभी गन्ने की फसल इतनी अच्छी नहीं देखी थी, उतना अच्छा क्रॉप हमें दिखाई दे रहा था, लग रहा था ये कोई जादू है, समझ में नहीं आता। लेकिन बाद में दीदियों ने बताया कि देखो पानी को जब आप चार्ज करते हो ना तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। मैंने कहा आपको किसने बताया? बोला एक जापान में साइंटिस्ट है मसोरो इमोटो, उन्होंने इसको रिसर्च किया है। मैंने कहा किया होगा जापान की बात लेके मुझे क्या करना है? हमारा लक इतना अच्छा है कि जापान को मसोरो इमोटो वाली टीम 2019 में हम किसानों को मिलने के लिए भारत आई थी, और पुणे में हम सब किसानों को इकट्ठा करके उन्होंने हमारे सामने पानी रखे, उन्होंने हमको कहा मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, कुछ अच्छे शब्द बोलो, कुछ गलत शब्द बोलो। प्रैक्टिकल में जब करके दिखाया और पानी को टेस्ट करके दिखाया तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हमने तो केवल यूट्यूब में देखते थे कि मसोरो इमोटो में पानी को चार्ज किया, पानी को गलत बोला आई हेट यू तो पानी के मॉलिक्यूल्स काले हो गए, पानी को आई लव यू बोला तो पानी के मॉलिक्यूल्स डायमंड जैसे चमक रहे थे। तब हम विद कॉन्फिडेंस और आगे प्रकृति को योगदान देने लगे, क्योंकि सचमुच मेरी बातें प्रकृति को समझती है। अब पानी को समझते जमीन को क्या समझती होगी? आप सबको पता होगा अग्निहोत्र पद्धति नाम की एक खेती पद्धति है, जिसको बायोडायनेमिक खेती पद्धति है। रॉब स्टेनर नाम के एक वैज्ञानिक जिसके जनक है, उन्होंने कई बार कहा है अगर ब्रह्मांड की शक्ति से आप जमीन को चार्ज करते हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन को बढ़ाना कोई संभव नहीं है, सहज पॉसिबल है। अब ब्रह्मांड की शक्ति को यूज करने का सही तरीका क्या है, वो है भारत का प्राचीन योग जो केवल ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है। हम लोग प्रकृति से वार्तालाप भी करते हैं। जब कभी जमीन में बीज बुआई करने का समय होता है तो बहनों ने हमको सपाया बीज सामने रखो, ध्यान करो, ध्यान में स्वयं को अंदर आकाश में चमकते हुए सितारे जैसे एक आत्मा स्टार रियलाइज करो, और मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूं। शांति के वाइब्रेशन पूरे बॉडी में फैल गए और वो मेरे बॉडी से पूरे बाहर वातावरण में फैल रहे, वातावरण बिल्कुल शांत हो रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। मेडिटेशन के समय हम एक संकल्प उस सीड को देते हैं कि आपको निरोगी और शक्तिशाली प्लांट्स का निर्माण करना है। सिंपल सेंटेंस है, एक जादुई सेंटेंस है। दीदी ने आपको बताया ना टाइम के हिसाब से, लेकिन उत्तराखंड जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेकर 2 साल का रिसर्च पूरा किया है, जिसमें केवल सीड जर्मिनेशन 10% बढ़ गई है, जिसका रिसर्च डाटा 2016 में जुलाई 2016 में इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है कि मेडिटेशन से कैसे सीड जर्मिनेशन पावर बढ़ती है, 8-10% तक जर्मिनेशन पावर बढ़ती है। और इसके रिसर्च कई सारे भारत के बाहर भी हो रहे, चीन में भी कर रहे। चीन में बीज को रॉकेट में भरते, स्पेस में उड़ाते, वहां लाके कुछ समय रखते हैं, उससे लाके नीचे उसकी बुआई करते हैं, तो 10% जर्मिनेशन पावर बढ़ती है, पता नहीं इसके पीछे क्या राग है। लेकिन मेडिटेशन जब से हमने करना है, सीड जर्मिनेशन बढ़ गए। बीज के साथ वार्तालाप करना सिखाया। हम जब छोटे थे तो हमारे पापा कहते थे बीज की पूजा किए बगैर बीज को खेती में बोना नहीं है। हम लोग झटके से उसको पहले नारियल चढ़ाते, उदबत्ती लगाते। हमारे मराठी में कहते हैं मन नहीं भाव देवा माला पाव। मन में भाव नहीं था लेकिन हम करते थे। लेकिन जब इन्होंने विद साइंटिफिक बेस पे बताया कि बीज के साथ वार्तालाप करो, तो हम वो पूजा करना छोड़ के बीज के साथ भावना के साथ जुड़ गए और हमें रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। बीज बुवाई से पहले धरती माँ को योगदान देते हैं, धरती माँ को एक प्रार्थना करते हैं, आप इस बीज को अपने गोद में स्वीकार कर लो और इसको अच्छी तरह से फलीभूत कर दो। सिंपल सिंपल भाषा, कोई उर्दू भाषा ऐसी सिखाई नहीं ब्रह्मा कुमारी ने हमको। सिंपल भाषा में बताया कि धरती माँ से बात कर दो। हम उस धरती माँ से रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपकी गोद में एक अच्छी तरह से अच्छा बीज समर्पित आपको अर्पित कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से फलीभूत करना, एक अच्छा निरोगी शक्तिशाली पौधा निर्माण करना। हम पागल जैसे जब खेत के साथ बात करते हैं ना, तो प्रकृति हमें सामने से रिस्पॉन्स करती है। हमने छोटेपन में पढ़ाया था जैसे हमारी आंतरिक प्रकृति होती है वैसे बाह्य प्रकृति हमें रिस्पॉन्स करती है। अगर आंतरिक प्रकृति शुद्ध है तो बाह्य प्रकृति हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर अंदर में कुछ गड़बड़ है, कमी है, कालापन है, खोट है, तो बाह्य प्रकृति हमें जरूर डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए अंदर की प्रकृति को ठीक करने के लिए ध्यान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान हमें अंतर जगत की यात्रा सिखाता है। ध्यान को कम मत समझ लीजिए। जितना भी साइंस है ना, वो साइंस अध्यात्म रूप में माँ का एक छोटा सा बच्चा है और कुछ नहीं है। आप सब समझते हो क्योंकि मैं प्रैक्टिकल की बातें बता रहा हूं। हम लोग 2011 में हमने जो खेती में अनुभव किए थे, हम लोग खेत में जाते हैं ना तो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सिखाया कि मेरी खेती परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है, बिल्कुल पशु पंछी आके उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई भी प्राकृतिक आपदाओं में मेरी फसल सुरक्षित रहेगी। ऐसे आप संकल्प करो और मेडिटेशन करो, खेती के चारों तरफ एक ओरा बनाओ, संकल्पों का, शांति की, प्यूरिटी का, शक्ति का एक ओरा बनाओ। आपको आज ये शब्द नए लगेंगे लेकिन एक संपूर्ण विज्ञान है। हम करते थे तो रिजल्ट भी मिलती थी लेकिन किसी को बताना मतलब हंसी की बात आती थी। लेकिन ये सब अनुभव करने के बाद हम 2011 में पुणे में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर विजय भटकर जी, उनसे मिलने गए थे। उनको टाइम नहीं था, हम ऐसे ही डायरेक्ट गए थे। दीदी भी थी हमारे साथ, उनको एक कार्ड दिया तो बोला आज टाइम नहीं, कल परसों आ जाओ। और जब बाहर आ गए सही से सफेद वस्त्रधारियों को देखा, अरे आप लोग क्यों आए हो? तो हमने कहा ऐसे ऐसे आए थे, तो चलो मुझे सुनाओ क्या सुनाना है। अंदर आ गए और करीब 42 मिनट्स तक उसने केवल सुन लिया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट अपना डिसीजन बताया कि आपको मेरे खेत में आके करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं इसको स्वीकार करूंगा। 2011 में हमने उसके खेत में जुलाई मास में जाके वो प्रैक्टिकल रिजल्ट अब दिखाई, तब वो हमारे खेत में आए थे। आप नुमा शाम कैसे योग करते हो, अमृत वेला कैसे होते हो, प्लांट्स के साथ कैसे बात करते हो, एक दिन रात भर रह के उन्होंने सारी बातें सिखाई। सुबह जाते समय कुछ नहीं बोला, केवल एक बात बताई थी, बाला साहेब आप जो कर रहे हो वो सही रास्ते पे चल रहे हो, मैं अपना अनुभव आपको सुनाता हूँ। ये जो सुपर कंप्यूटर निकला है ना, ये ध्यान से उसका जन्म हुआ है। मैंने कहा कैसे सर? वो मैं और कभी बताऊंगा। फिर उन्होंने एक बार बताया कि जब भारत में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, तब अमेरिका कंप्यूटर का टेक्निक भारत को देने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय राजीव गांधी जी ने सारे साइंटिस्टों को इकट्ठा किया था और कहा कि हमें ऐसा मशीन तैयार करना है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हम भर के रखे और समय पर उसको निकाल के देख सके। कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र के सुपुत्र विजय भटकर जी ने हाथ खड़ा किया, तो उनको कहा आप कर सकते हैं। 3 साल की पीरियड था, जेड सिक्योरिटी मिली थी, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन 2 मास के अंदर वो तनाव में आ गए। करना क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, कुछ भी पता नहीं। तब उसने समझा कि मुझे अब कुछ ध्यान धारणा करना जरूरी है। उन्होंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया और गीता है बारंबार एक ही शब्द आ रहा था, मन मना भव, मन से प्रभु को याद करो। जब उन्होंने मन से प्रभु को याद करना शुरू किया तो मन के अंदर ध्यान में, ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, साधारण बात नहीं है। ध्यान करना शुरू किया तो उनको टच होने लगा कि इसको ये जोड़ दो, उसको वो जोड़ दो, उसको वो जोड़ दो। ऐसे करके सुपर कंप्यूटर का जन्म हुआ है। और हम लोग सोचते हैं कंप्यूटर माना सर्वस्व, सॉरी विज्ञान माना सर्वस्व, विज्ञान सर्वस्व नहीं। जितनी भी बातें हैं आध्यात्मिकता में सब लिखी हुई है। आज हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं हम आधुनिक युग में नहीं, हम मध्यकालीन युग में जी रहे हैं। मध्यकालीन जो लोग थे, जिसमें संत कबीर थे, ज्ञानेश्वर महाराज थे, ऋषि सुरपाल जी थे, ये सब आधुनिक युग में जी रहे थे। मैकिन्स नाम का एक वैज्ञानिक भारत में आया था, भारत का पूरा स्टडी कर रहा था, और जब अरुणाचल पर्वत के नजदीक गया तब उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा है रास्ते से, और उनके पीछे पीछे सारे हिंसक प्राणी पंछी सब कुछ जा रहे हैं। रमन महर्षि उनका नाम था। उन्होंने आश्चर्य से सब देखा कि दो तीन दिन लगातार उन्होंने देखा, और जब उन्होंने स्टडी किया तो जब जैसे ही रमन महर्षि कुटिया से बाहर निकलते थे, एक एक पंछी गिद्ध जैसे प्राणी उसके सिर पर घूमते घूमते चलते थे। हिंसक प्राणी कुत्ता बिल्ली जंगली जानवर उनके पीछे से आते थे। गांव में प्रभास यात्रा निकलती थी, जैसे ही गांव में आते थे गांव बांधी हुई गाय अपनी रस्सी तोड़ के उनके पीछे से भागती थी, और जैसे ही लास्ट में रमन महर्षि अपने कुटिया में जाते थे सब अपनी अपनी हिंसकता को भूल के वापस अपने अपने घर लौटते थे। रमन महर्षि जी ने किसी को बुलाया नहीं था आओ मेरे पीछे। उनका एक ओरा इतना पॉजिटिव था, तपस्या करके ध्यान करके उन्होंने इतना जबरदस्त ओरा प्राप्त किया था। वो पंछी प्राणी भी शांति की अनुभूति करना चाहते थे। गौतम बुद्ध जी ने एक क्रोधित हाथी को शांत किया था, कोई संकल्प नहीं केवल ऐसे हाथ किया था, तपस्या करके इतना बल जमा किया था, आत्मशक्ति शांति की शक्ति से उन्होंने क्रोधित हाथी को भी शांत किया था। क्या ध्यान में ताकत नहीं है? आज की सरकार पहले तो योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अब योगा के नाम से बहुत कुछ होने लगा, प्राणायाम आसन आदि, फिर भारत सरकार ने नया ध्यान दिवस जाहिर कर दिया। अब केवल ध्यान मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन में जबरदस्त ताकत है। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। शरीर एक गाड़ी है, आत्मा एक ड्राइवर है। जब ड्राइवर अच्छा होता है तो इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक तरह से चलाता है, और ये सारी बातें विज्ञान ने प्रूव की हुई है। कृषि में हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब एक लेसन था सर जगदीश चंद्र बोस जी के नाम से, और उसमें उन्होंने लिखा था कि वनस्पतियों में भावनाएं होती है, विचारों को समझती है, रिटर्न में प्रतिक्रिया रहती है, सब कुछ लिखा था। मैंने कहा ठीक है हुआ होगा। जब मैंने उसका और स्टडी किया तो उसने लिखा था उस समय में, आज हम आधुनिक युग में कहते हैं, बिल्कुल आधुनिक युग नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में 42 एग्री यूनिवर्सिटी होते हुए भी एक भी यूनिवर्सिटी में ऐसा मशीन नहीं है जहां मनुष्य के विचारों को पौधा समझ सके और रिटर्न में रिप्लाई दे सके। उस टाइम उन्होंने ऑप्टिकल पल्स रिकॉर्डर नाम का मशीन तैयार करके इस बात को सिद्ध किया था कि पौधे हमारे विचारों को समझते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर नाम का एक वैज्ञानिक केवल पौधों से बातें करके उन्होंने उसे रिप्लाई था, जो आज हमारे जीवन में मूंगफली आलू खा रहे उसका सारा श्रेय जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर में है। और वो विज्ञान सच्चा था जिस टाइम चार्ल्स डार्विन ने कहा है द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, में पौधों में भी ब्रेन होता है, वो हमारे विचारों को समझते हैं। आज का विज्ञान नहीं मानेगा पौधों में कहां से ब्रेन आ गया कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स कन्वर्जन आत्मचेतना से कृषि में न्यूट्रिएंट्स परिवर्तन आज का विज्ञान नहीं मानता है। जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और रसायन शास्त्र पीछे हटता है उसके आगे जाके पौधे डेली अपने अन्न को तैयार करती है, एक मूलद्रव्य का परिवर्तन दूसरे मूलद्रव्य में करके अपटेक करती है। द ओरिजिन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस किताब में फेनर नाम के वैज्ञानिक स्पष्ट लिखा है कि नाइट्रोजन का पोटेशियम में, कैल्शियम का फॉस्फोरस में पौधा परिवर्तन करके अपटेक करता है। लेकिन केरवान नाम के एक साइंटिस्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जहां वैश्विक शक्ति काम करते हैं वहां ये पौधों को संभव है न्यूट्रिएंट्स कन्वर्जन करना, और वैश्विक शक्ति का सोर्स है केवल परमात्मा। और परमात्मा के बारे में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पष्ट कहा है, जो इस सृष्टि को चलाने वाली एक चैतन्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा का सोर्स आउटसाइड द यूनिवर्स देयर इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, उसी पॉइंट को आइंस्टाइन ने भगवान कहा था, और ब्रह्मा कुमारीज में भी उसी का परिचय मिल रहा है कि वही भगवान है। उससे मन बुद्धि के तार जोड़ दो, अपने आप को सशक्त बनाओ, और अपने विचारों को बीज पौधा जमीन पंछी प्राणी सबको ट्रांसफर कर दो, तब ये सब आपके लिए सहयोगी बनेंगे। और हमने उसको प्रैक्टिकल में किया, उसके रिजल्ट हम देख रहे हैं। न केवल ये, केवल अगर आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हो ये कदापि संभव नहीं है जैव विविधता के बिना। ब्रह्मा कुमारी ने हमको सिखाया आपको अपने खेत में एक छोटा सा एग्रो फॉरेस्ट बनाना है। मैंने 20,000 स्क्वायर फुट एरिया में एक जंगल बना दिया है जिसमें सारे पंछी प्राणी आके बैठते हैं, जहां पे मोर एक आवाज भी करता है तो 250 प्रकार की वायरस की फ्रिक्वेंसी कट हो जाती है। फिर चिड़िया होती है, चिड़िया का महत्व पेस्ट कंट्रोल में होता है, सारे साइंस साइंटिफिक प्रूफ है इसमें। चीन और चिड़िया जाके डायल करो आपको समझ में आएगा। तो ये सारा एक विज्ञान इस अध्यात्म में छुपा हुआ है। आध्यात्मिकता का फाउंडेशन अगर कोई है तो है आत्मा। आत्मा चेतना से कृषि में परिवर्तन बहुत बड़ा लाया है। तो आप सब यहां से जाने के बाद किसानों को अगर प्रेरित करना चाहते हैं, अपने आप को अगर अनुभवी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लिए जितना चाहिए उतना 2-4 पौधे लगा के बातें कीजिए उन पेड़ पौधों से, और फिर किसानों को ट्रेनिंग देने की बात, किसानों को ट्रेनिंग देने के जाने के पहले आप केवल योग की बात मत लीजिए, पहले उनको फिजिकल बातें बताओ, नेचुरल यूरिया डीएपी के बिना खेती उगती नहीं, ऐसे उनके मन में कट्टर प्लान बना हुआ है, लेकिन उसको अगर निकाला है तो नेचुरल यूरिया नेचुरल डीएपी के बातें बताओ, साथ में उसको भावना की बातें बताएंगे तो किसान अच्छी तरह से सफल हो जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति।
आपको सुनकर ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ प्रगतिशील किसान नहीं किंतु चलती फिरती कृषि है, जिसके पास अनुभवों का खान है और अपने अनुभवों की ज्ञान की बरसात है। एक के बाद एक जैसे उनके अनुभव निकलते जा रहे थे, ऐसे अनुभव के गगन को हम मिनटों में तो नहीं समा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करती हैं भ्राता डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, जिनके लिए कहना चाहूंगी मिट्टी से जुड़कर जिसने नया इतिहास रचाया है, मिट्टी से जुड़कर जिसने नया इतिहास रचाया है, प्राकृतिक खेती से किसानों को आगे बढ़ाया है, प्राकृतिक एवं जैविक खेती के क्षेत्र में समर्पित वर्ष 2017 से किसानों को ट्रेनिंग देने वाले तथा 2018 से अपने खेत पर प्राकृतिक खेती का सफल प्रयोग करने वाले आप एक अनुभवी व्यक्तित्व हैं। प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करने में आप निरंतर जुटे रहते हैं। जमीन से जुड़े और प्रेरणादायक वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं, कृपया स्वागत करें डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का।
ओम शांति। ओम शांति। माउंट आबू की इस पवित्र धरा पे आज के इस पवित्र समारोह में बहुत ही सम्मानित मंच, पवित्र आत्मा सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमन। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे जो ये 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, इसमें आने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे वो दिन याद आ गया जब इस पवित्र धरा पे वर्ष 2012 में बाबा जी के इस सानिध्य में आने का मेरे को अवसर मिला था। और उस समय मेरे मन में यहीं से आया था कि जो हम ये रासायनिक खेती कर रहे हैं, जहरीले रसायनों के मदद से हम जो उत्पादन ले रहे हैं वो हम ठीक नहीं कर रहे, कहीं न कहीं आने वाले समय में हमें इसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। और उसी टाइम से मेरे मन में जो है बस उथल पुथल मची थी, और मैंने अपने वापस जीन जाने के बाद वहां पे जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है विजय भाई जी, उनके सानिध्य में आने के बाद कुछ शाश्वत योगिक खेती के कार्यक्रम मैंने अटेंड किए, तो उसी समय से मेरे मन में आया था कि मैं इसमें जो है कुछ न कुछ अलग से करना चाहूंगा। उसी वर्ष से मैंने किसानों को इसकी तरफ समझाने का प्रयास शुरू किया, और स्वयं के खेत पे भी मैंने 2018 में बगैर रसायन के गो आधारित प्राकृतिक अनुकूल खेती का जो प्रयास किया, उसे मेरे प्रयास को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मुझे किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने का दायित्व की जिम्मेवारी मेरे को दी गई। और आज मैं हरियाणा में प्रदेश स्तर पर हरियाणा के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम देख रहा हूं, उनको प्रशिक्षण देने का कोशिश कर रहा हूं। इस कड़ी में हमने लगभग पिछले 3 वर्षों में हमने 25 से 30 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया, और उसमें हम जो है लगभग 10-11 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने में कामयाब भी हुए। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी, जो किसानों के मन में एक डर बना रहता था उत्पादन कम होने का, जो अभी भाई जी ने बोला उनकी बिक्री का, इस प्रकार के डर आज तक भी हम नहीं निकाल पाए। आज जब से कल से जो अब सेशन अटेंड कर रहे हैं, तब से फिर मेरे को जो है अनुभव हुआ कि हमारे उस प्रयास में कमी है। अब मेरे को वो बातें याद आ रही हैं कि जिस टाइम पे हमारे जो किसान भाई खेत में जाते थे, खेत के अंदर जो पहला कदम रखते थे तो धरती माता को चुस्कारते थे, तो अपने माथे पे उसको जो है लगाते थे। और हमारे हरियाणा में तो जब बैलों से जुताई की जाती थी तो बैल की पीठ को थपथपा के, बड़े प्यार से पीठ को थपथपाता था किसान और कहता था ले राम का नाम। मतलब इतनी अच्छी भावना के साथ जो अपने वो खेती के कार्य की शुरुआत करता था, उसके अंदर जो मैं देख रहा हूं, जब दीदी ने कल बताया कि भी हम जो बीजों के साथ 5 बीज और भी जो है बिजाई कर दे, उसमें हमारे संकल्प का, श्रद्धा का, प्रेम का, शांति का, यदि वो बीज भी हम साथ में बिजाई करते तो उसका जो है परिणाम अलग ही होगा। और कहीं ना कहीं ये जो है इनपुट मैं कहूं, हमने नो डाउट कि हमने जो है उस प्राकृतिक खेती के प्रोटोकॉल के हिसाब से गाय के गोबर से, गोमूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत के प्रयोग करे, हमने आच्छादन और वापसा जैसी जो है पद्धतियों को उसमें अपनाया, लेकिन जो मुख्य जो इनपुट का आज मुझे आभास हो रहा है कि उस भावना जो गायब है कहीं न कहीं, हमें उसको दोबारा से जगाने की जरूरत है। यदि हम उसको जो है उस आध्यात्मिक जो आज का हमारा विषय भी है उसके साथ यदि हम जोड़ के चलते हैं तो नो डाउट के हमें जो उसमें संभावना मिलने की 110% संभावना है कामयाबी मिलने की। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जो यहां रक्षा करें, लेकिन उस भगवान रूपी, उस भगवान के शब्द का अर्थ जिसमें 4 शब्दों से जो भगवान शब्द बना है उसमें एक बहुत बड़ा अर्थ समाया है। भय से भूमि, गय से गगन, वा से वायु और ने से नीर। अब भगवान से रक्षा की प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन इन 4ों के प्रति क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? आज जो किसान अपने उस धरती माता को माथे से लगाता था, उसकी पूजा करता था, बीज की जो है संस्कार के साथ उसकी पूजा करके बिजाई करता था, वही किसान आज हम देखते हैं उस माँ को, जिसको धरती माता बोल का जो माँ का दर्जा दिया है, उसको जो है वो खेत के अंदर घुसते ही जो है जहर डालता है, जहर पिलाता है। और कुछ प्रदेश में, खास करके ये हरियाणा पंजाब जहां पे धान का बहुमूल्य क्षेत्र है, वहां तो अकेला उससे जहर जहर से भी काम नहीं चला रहा, उस धरती माँ को तो आग लगा के जला भी रहा है। उस आग लगाने से जो इस धरती माँ की सौगात, जो इस धरती माँ ने जो है इतने, इस प्रकृति ने जितने इतने जो है 84 लाख योनि जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े पशु पक्षी, हाथी घोड़े तक जो है इतने बड़े बड़े पशु हैं, जिनका सबका अधिकार है इस प्रकृति पे, इस धरती माँ पे, और सबका जीवन एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में काम करता है, उस जहर ने जिस प्रकार से इनको खत्म कर दिया, वो धरती माँ फिर भी अपना जो है एक माँ का रोल अदा करती हुई अक्ष्मा की, यासना की देवी के रूप में उस जहर को और आग को भूल के फिर उसको हमारे को अनाज के भोजन का जो है उत्पादन दे रही है। हम जो है उसके प्रति एक धरती पुत्र होने का धर्म सही तरीके से नहीं निभा रहे, उसी के दुष्परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे। जब से ये सोच साथ में आई, तब से उसी रूप से प्रयास किया। और मैं तो जो है आभारी हूं हमारी जो जीन सेंटर की बहनें हैं, संतोष बहन, नीलम बहन, उन्होंने जो है उसको अध्यात्म से जोड़ा और उसका हमने जब से जो प्रयास किया है, तो इसमें कोई दोराई नहीं है। जो हमारे यहाँ का जो उत्पाद है और दूसरे जो जैविक या प्राकृतिक तरीके से जो खेती करते हैं उनके जो है कंपैरिजन में हम देखते हैं, तो हमारे उत्पादों की प्राथमिकता, हमारे उत्पादों को प्राथमिकता मिलती है। इससे साफ झलकता है कि भाई कहीं न कहीं जो हम उस भावना के साथ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमारे कहीं न कहीं उसमें गुणवत्ता कहिए आप या कुछ और नाम कहें, वो आई है। और उस चीज को जब हम समर्थ गांव की जब बात करते हैं, जब हमारी ये प्रकृति के सौगात हमारे पास जो जल वायु धरती माँ मिट्टी के रूप में जो हमारे को मिली है, इनको संरक्षित करते हुए हम इनका ख्याल रखते हुए जब हम अपना उत्पादन लें और उसको जो है हम यदि गांव को समर्थ बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं उत्पादों को हम जब मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसी कड़ी में हमारी मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा रानी जी हमारे साथ में आई है, तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और हमारी महिला बहनों को जो है इन्होंने प्रशिक्षण दे करके उनको जो है उनका प्रोसेसिंग अपनाने का जो उन्होंने प्रयास किया। और इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी हमारी बहनों को रोजगार के अवसर मिले हैं, वो अपने परिवार के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया उन्होंने पैदा किया है। तो इस प्रकार से हम इस सच्ची भावना के साथ जिस प्रकार से हम पैदा कर रहे हैं, मैं तो जो है इस अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में आने का मुझे मिला। और डॉक्टर सुनीता पांडे जी जो उससे ज्ञान के साथ जो विज्ञान का एक योग जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी जो डॉक्टर साहब ने जो डेटे प्रेजेंट किए, वैसे तो डॉक्टर साहब से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, शायद डॉक्टर साहब को याद भी नहीं होगा, मैं कृषि विकास अधिकारियों का एक ग्रुप लेकर पंतनगर यूनिवर्सिटी गया था, तब जो है आपसे वहां पे मुलाकात हुई थी और एक दो बार जो है दूरभाष से भी मैंने जो है आपसे कुछ जानने का प्रयास किया था। लेकिन आज यहाँ पे जो विज्ञान की जो कहते हैं कि भी साइंटिस्ट इस चीज को मानते नहीं, लेकिन आज डॉक्टर साहब के जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हम देख रहे हैं कि साइंस में वो चीजें जो है साफ निकल के आ रही हैं कि ये जो अध्यात्म, जो प्राकृतिक खेती या यौगिक खेती, ये वैसे ही नहीं है, ये सारी की सारी विज्ञान आधारित खेती है। तो आज ये जो हमारी कार्यशाला, मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस पुण्य के कार्य को, हमारी जो जिम्मेवारी बनती है इस प्रकृति के प्रति, जो प्रकृति हमें जो पाल पलोस रही है उसके प्रति हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएं, यही मेरी जो आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद।
बहुत ही सिंपल अनुभव युक्त आपका वक्तव्य रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी, सादगी में जो गहराई की पहचान होती है, दिल से जो बोले वो सीधे दिल में स्थान ले लेता है, भावों में सच्चाई और शब्दों में असर रखते हैं, ऐसे ही लोग सच में खास इंसान होते हैं, ऐसे ही लोग सच में खास इंसान होते हैं। 2012 में प्रेरणा ली और उस पर वर्क किया और आज 2026 में एक प्रैक्टिकल प्रूफ और प्रयोग के साथ हमारे बीच आप उपस्थित रहे, सचमुच ये हमारे लिए अति गौरव की बात है और धरती माँ के लिए आप एक गौरव है। सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं भ्राता डॉक्टर अवतींद्र मिश्रा जी को। आप संयुक्त निदेशक कृषि विभाग अयोध्या से हैं। डॉक्टर अवतींद्र कुमार मिश्रा जी का अगर मैं परिचय देना चाहूं तो आप अयोध्या मंडल में संयुक्त कृषि निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 1991 से कृषि विभाग में सेवा देते हुए उन्होंने भूमि सुधार, जल प्रबंधन एवं विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया है। किसानों के प्रशिक्षण, महिला सशक्तिकरण तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती के प्रसार में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। नेदरलैंड में प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और बढ़ावा देने में विशेष पहल की है। वे कृषि विकास के प्रति समर्पित और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, जिनके लिए हम कहेंगे मिट्टी की खुशबू से जिनका नाता रहा। मिट्टी की खुशबू से जिनका नाता रहा, किसानों के हर दर्द से जो जुड़ा रहा। ज्ञान, अनुभव और सेवा का सुंदर संगम है आप। ऐसे व्यक्तित्व से आज मंच भी गौरवान्वित है। आमंत्रित करते हैं भ्राता डॉक्टर अवतींद्र मिश्रा जी को।
इस मंच पर आसीन ब्रह्मा कुमारी की बहन जानकी जी, समस्त इस परिवार से जुड़ी हुई जितने भी बहनें हैं, उन सबको मेरा सादर नमन। मेरे यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुनीता सिंह जी, जहां से मैंने अपनी एमटेक की डिग्री ली, दो विशेषज्ञ हमारे बीच में, एक जो प्रशिक्षित करते रहे हैं सभी को और जिन्होंने खेत पे काम किया है, उनके अभी संबोधन हमने सुना और बहुत ही प्रेरणादायक संबोधन रहा। मैं रामलला की भूमि से आता हूं, अयोध्या की रामलला की भूमि से हैं, तो सबसे पहले मैं सोचता हूं कि एक बार हमारे साथ मिलकर सब लोग जोर से नारा लगाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ी चेतना आनी चाहिए, पीछे के लोग काफी सो रहे हैं, तो जब हम सोएंगे तो हम कुछ ना कुछ खोएंगे। तो इसीलिए मैं सोचता कि एक बार जोर से ताली बजाइए इस मंच पे, और अपने लिए, सबके लिए ताली बजाइए जोर से, अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, जिससे हम इस चेतना स्वरूप शरीर से हम चेतन अवस्था में आ जाए। जीवन क्या है, इसको हम लोग जब से माँ के गर्भ में आते हैं, और गर्भ से आने के बाद आपने सुबह का भाषण सुना होगा कि चेतना स्वरूप के रूप में एक आत्मा हमारे माँ के गर्भ में 3 महीने में या 5 महीने में जब भी प्रवेश करती है, उस आत्मा के जन्म लेने के बाद से हम इस कर्म भूमि में आके अपने कर्म करते हैं, और फिर उस शरीर से आत्मा को छोड़ती है और हम परमानेंट टिकट कटा करके कहीं चले जाते हैं। चूंकि विषय आज का ऐसा है कि समय भी कम है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने को समय के अंदर रखूं। आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन, जो विषय है आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन, क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? हम सब वैज्ञानिक गण लगे हैं, साइंटिस्ट लगे हैं, और इतने सालों से हम लोग लगे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं परिवर्तन नहीं हो रहा, ये निराशा क्यों है? परिवर्तन तो है, और बहुत परिवर्तन है। जो प्रकृति के ने हमें दिया है, हमको उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि थैंकफुल होना चाहिए, और जब हम धन्यवाद के मोड में रहेंगे, हमको इस प्रकृति से जो भी मिला है, तो हमको जब तक थैंक्स गिविंग हमेशा आता रहेगा, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे गुरुजन हो, हमारे मित्र हो, हमारे साथ में आसपास रहने वाले पशु हो, पक्षी हो, हम सबके प्रति जब आभारी रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। और इसीलिए इन सारी चीजों को, जितने भी आध्यात्मिकता के शब्द अलग अलग हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यदि कोई भी कार्य को हम अच्छी नीयत से करेंगे तो फल हमें हमेशा अच्छा मिलेगा। नियत एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर का सब चीज आती है, चाहे वो योग हो, चाहे साधना हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे आपके कर्म हो। आपकी नियत अच्छी है यदि किसी कार्य को करने के पहले, तो इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है कि 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बात जब हम शुरू करते हैं प्राकृतिक खेती की, तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा तीन पी की बात करता हूं, प्रोसेस, प्रोड्यूस एंड प्राइस। हम प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोड्यूस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्राइस पर ध्यान नहीं दे रहे। और व्यवहारिक रूप से जब तक हमारे किसान भाई को प्राइस नहीं मिलेगा, तो आप चाहे प्रोसेस में कितना भी ध्यान दीजिए, प्रोड्यूस में कितना भी ध्यान दीजिए, वो चीज सक्सेसफुल नहीं होने वाली। जेब में गांधी जी हैं तभी सब कुछ चलेगा, जेब में गांधी जी नहीं है तो चीजें बहुत सी नहीं चलेंगी। तो प्राइस कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, बहुत लंबा मेरा अनुभव है, लगभग 35 साल की नौकरी हो गई है। पढ़ाई के दौरान इंजीनियर रहा तो 2x2 चार ही पढ़ा, 5 नहीं पढ़ा। एमटेक करने के बाद फिर पीएचडी किया। पहला मेरा जो प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ वो सन 1996 में, मैं फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, कानपुर और प्रयाग के बीच में, मैं वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के साथ था वहां। तो जैविक खेती, उस समय की बात आई कि जैविक खेती शुरू किया जाए और उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो जैविक खेती में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनानी है, फिर वर्मी वाश बनानी है, फिर बायोडायनेमिक खेती की बात आई तो CPP कैसे करना है, BD1 से लेकर BD5, BD6, BD7, 8 तक उसके एंजाइम्स वगैरह पन्नागढ़ से हम लोग मंगा करके हम लोगों ने प्रयास शुरू किया। और एक गांव मैंने सेलेक्ट किया था, चौफेरवा का नाम मुझे याद है, और 1.5-2 साल काम करने के बाद मैं पूरी तरह से वहां फेल हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। निराशा बहुत थी कि आखिर कहां गलती हुई। फिर उसको स्टडी किया तो वही होता है जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम में होता है या कहीं भी होता है कि टारगेट्स आ गए, फटाफट काम करना है, टारगेट्स को पूरा करना है, तुरंत गांव सेलेक्ट करके दीजिए। तो गांव को सेलेक्ट किया गया और जल्दी जल्दी में जो भी मैं समझ पाया मैंने किया और वहां मैं पूरी तरह फेल हो गया। फिर फेल्योर को मैंने स्टडी किया कि आखिर रीजन क्या है, क्योंकि जब तक आप फेल्योर को स्टडी नहीं करेंगे, सक्सेस स्टोरी सब सुनाते हैं, जब आप फेल्योर को पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस का रास्ता मिलेगा। तो मैंने फेल्योर को स्टडी किया और फिर मैंने पाया कि जो मूल गांव है उसकी प्रकृति ही जो मैंने चुना वो गलत चुना। यहां पे मैं लेके इस कार्यक्रम को आया, ये गलत गांव को मैंने चुनाव किया क्योंकि इस गांव की प्रकृति अलग थी। फिर मैंने कहां सक्सेस होगा, तो ऐसा गांव ढूंढिए जहां पर सब्जी की खेती ज्यादा होती हो, मिर्ची की खेती ज्यादा होती हो, जहां मौर्य परिवार रहता हो, जो मेहनत करने वाले लोग होंगे, क्योंकि जो चीज मैं लेके आ रहा हूं ये धान गेहूं में काम नहीं करेगा, ये सब्जी और फल में काम करेगा। एक गांव देवरी था मुझे याद है, 97-98 में मैंने वहां शुरू किया और 2-3 साल के अंदर में इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आए। वहां पर पूरा वर्मी कंपोस्टिंग का, वर्मी वाश का, CPP का प्रोसेस, BD1, BD2, BD3, BD4 पूरा बायोडायनेमिक का प्रोसेस वहां किया गया और लैब में टेस्ट कराया गया। द रिजल्ट्स आर मच बेटर देन द व्हाट हैज बीन प्रोड्यूस इन द लैब। तो वो गांव 2002-2003-2004 तक वो रहा, फिर मैं वहां से हट गया। 5-7 साल चलता रहा, काफी साल तक वहां चलता रहा, लेकिन फिर जो उसके मेन पीछे जो लोग जुड़े थे धीरे धीरे, आज मुझे पता नहीं कि उसकी क्या स्थिति है, लेकिन अच्छा गांव निकला। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि हमारी नीयत अगर जब साफ होगी तो हम काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब मैं फिर लौट के वहीं पर आना चाह रहा हूं कि प्राइस, हम प्राकृतिक खेती करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं, पिछले 7-8 साल से करा रहे हैं। एक मनुष्य का स्वाभाविक सा स्वभाव है, बाजार में जाएगा, कड़वा तेल देखेगा 150 रुपए लीटर का मिल रहा है, एक 200 का मिल रहा है, एक 250 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, बहुत देर तक घूमेगा, बाद में 150 वाला या 150-200 वाला लेके चला आएगा, 350 रुपए नहीं देगा, 300 रुपए नहीं देगा। तो आप प्राकृतिक सरसों पैदा करके क्या करेंगे, आप नेचुरल कोदो, नेचुरल राइस पैदा करके क्या करेंगे? प्राइस किसान को नहीं मिलेगा तो किसान हतोत्साहित हो जाएगा और वापस से फिर वो केमिकल फार्मिंग पे जाएगा। तो यहां पर आवश्यकता है हम लोगों की कि हमको कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज करने की आवश्यकता है। और यहां पर ब्रह्म कुमारी का काम, योग साधकों का काम, जो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, हमको ऐसी विधा बनानी है कि हमें 100% के लिए नहीं, 5% मास के लिए, 10% मास के लिए उनके जो बिहेवियरल चेंज है उनको चेंज करना पड़ेगा और कंज्यूमर तय करना पड़ेगा जिसके लिए कॉन्सेप्ट हमने उन्होंने दिया कि जैसे हमारे पास में एक किसान के साथ में एक डॉक्टर जुड़ा होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे ही हम एक फैमिली फार्मर बनाएंगे, एक फैमिली फार्मर फैमिली बनाएंगे कि हर परिवार के साथ में एक फैमिली फार्मर फैमिली हो, और उस परिवार को हम जब उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक का उत्पाद हमारे पास आ रहा है उसको प्राइज मिलेगा, तो वो किसान या वो परिवार या फिर उसके माध्यम से वो गांव धीरे धीरे मोटिवेट होगा और हमारी प्राकृतिक खेती आगे बढ़ेगी। इस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया है। लखनऊ के अंदर में हम लोगों ने कई ऐसे हमारे पास में जो FPOs हैं, तमाम ऐसे फार्मर्स हैं, अयोध्या के अंदर में हैं, उनको सीधे के सीधे हम लोगों ने किसान परिवारों से को एक एक अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो इलीट क्लास के लोग हैं, डॉक्टर्स पे कर सकते हैं, इंजीनियर्स पे कर सकते हैं, IAS अधिकारी पे कर सकते हैं, PCS अधिकारी पे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो अच्छा प्रोड्यूस हम चाहते हैं। बाजार में दूध 80 रुपए किलो है, शुद्ध प्राकृतिक दूध हमें 110 रुपए लीटर मिलता है, तो हम तो पिछले 5 साल से अपने घर में वही लेते हैं। तो हम जब तक ये बात नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपने शरीर के लिए क्या सही है, क्या लेना है, तो हमको कुछ ऐसे परिवारों को, फैमिली को तैयार करना पड़ेगा जो आपके प्राकृतिक उत्पाद को पैसा दे सके। जब हम प्राइस तय कर लेंगे तो फिर हम प्रोड्यूस की ओर आएंगे, और प्रोड्यूस अच्छा करने के लिए फिर जो बात आती है कि आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कृषि में परिवर्तन हम कैसे लाएंगे, वो सारी की सारी बातें वहीं से आती हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न कहां से आएगा? अन्न आएगा धरती माँ से। क्या कहा गया था वेद में? माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, अर्थात धरती हमारी माता है और हम सब उनके पुत्र हैं। एक माता और है, हमने कहा सशक्त किसान सशक्त ग्राम, किसान सशक्त होगा गांव सशक्त होगा तो होगा ही, लेकिन जब तक खेती के साथ में बाड़ी और खेती के साथ में पशुपालन नहीं जुड़ेगा तब तक खेती समृद्ध नहीं हो सकती। तो खेती के लिए हमको समृद्ध पशुपालन करना होगा, चाहे हम गाय लाएं चाहे बैल लाएं, देसी किस्म की अपनी गाय को लाना पड़ेगा, क्योंकि धरती माँ देवी का देव की देव, वो देव कृष्ण की चन्नी है, देव की माँ है, और गाय यशोदा माँ है, पालक है हमारी। यदि हम पालक माँ को साथ छोड़ देंगे तो फिर हम आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है खेती के लिए, क्योंकि जितनी बातें हम कह रहे हैं सब खेती के साथ, किसान भाई जब तक गाय का पालन नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, और यही भूमि हमारी अन्नपूर्णा देवी है। इसीलिए हम कहते हैं सुबह उठने के बाद में कि पहले धरती माँ को हम प्रणाम करते हैं, हम सब लोग जानते हैं धरती माँ को प्रणाम करिए, उठने के बाद करतल को देखिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, सब हम लोग अपने पूर्वजों से सीखते चले आए हैं और उसे ही हमें कहना है। ये जो भूमि अन्नपूर्णा है, इस भूमि में अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे 45% उसमें खनिज है, इतना परसेंट पानी है, इतना परसेंट पोरसिटी होती है, ये ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो हम बीज डालते हैं, जो बीज रोपण करते हैं, उस बीज के अंदर में जो बीज की बढ़वार होती है उसमें 1.5% से मात्र 2% तत्व ही पौधे इस भूमि से उठाते हैं, बाकी 98% तत्व जो है हम वायुमंडल से लेते हैं। डॉक्टर साहब अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइएगा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, हम लोग तो तमाम तरह की चीजें हम लोगों के बीच में आती हैं, हम लोग हर चीज को देखते हैं कि डेटा हो सकता कहीं गलत हो, लेकिन जितना मुझे याद है कि 1.5% से 2% खनिज तत्व भूमि से हम उठाते हैं और 98% हम वायुमंडल से लेते हैं। वायुमंडल से कहां से लेते हैं? सूरज की रोशनी से लेते हैं, जल से लेते हैं, वायु से लेते हैं, और पांचवा तत्व आसमान से लेते हैं, धरती से लेते हैं, तो एक तत्व वहां से छित जल पावक गगन समीरा, ये जो पांच तत्व हैं इसमें एक तत्व तो धरती से, बाकी पांच चार तत्व हमारे वायुमंडल से हैं और वहीं से लेते हैं। अगर तो अब फिर बात वहीं आ गई लौट करके, यदि वायुमंडल स्वच्छ नहीं होगा, प्रकृति स्वच्छ नहीं होगा, तो फिर हम जो एब्जॉर्व कर रहे हैं फसलों के बढ़वार के लिए वो स्वच्छ नहीं होगी। तो हमें क्या ठीक करना है, ठीक क्या करना है, हम सब ठीक करने में लगे हुए हैं प्रकृति को। प्रकृति को कोई ठीक कर पाया है? नहीं। खराब भी हमने क्यों किया? हमने खराब, अभी कोरोना आया था, 4-6 महीने सब कुछ ठीक हो गया था, दिल्ली की नदियां भी ठीक हो गई थी, घर भी ठीक हो गया था, हवा भी ठीक हो गई थी, हमने संयम रखा था। नहीं 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 मैडम, ऐसा नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, पॉजिटिव वाइब से जी हैं। हम आप सब ने अनुभव किया होगा, हम लोग अपने मित्रों के घर में जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ घर में जाते हैं तो अपने आप मन अंदर से करता कि नहीं यहां फिर आना चाहिए, इस घर में आना चाहिए। और कहीं पर जाने के बाद ये महसूस होता है हमें, ये चेतना में हमें महसूस होता है कि इस घर में आने लायक नहीं है। क्यों? जहां पॉजिटिव वाइब्स होंगी, जहां पॉजिटिव लोग होंगे, जहां पॉजिटिव विचारधारा होगी, जहां पॉजिटिव वायुमंडल होगा, वहां चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। और जहां पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, वहां नेगेटिव एनर्जी का वास होगा, वहां चीजें अपने आप डायनेमिक होगी। हम क्यों जाते हैं सत्संग में, क्यों जाते हैं अध्यात्म में, फिर जाने के बाद हट जाते हैं? अगर पॉजिटिव वाइब्स आपको नहीं मिलेंगी, आप हट जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आप जुड़ जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता था कि जंगल का एक नेचुरल रीजनरेशन प्रोसेस है, जंगल का एक नेचुरल रीजनरेशन प्रोसेस है। और वहां कौन जाता है उसको खाद देने के लिए, पानी देने के लिए, वो देने के लिए? लेकिन चूंकि हम इस समाज में आए हैं और हम इस कर्मयोग की भूमि में आए हैं, अभी हम 140 करोड़ हैं, अगले 10 साल के अंदर में हम 150 करोड़ से 160 करोड़ हो जाएंगे, तो इनके खाने का भी ध्यान हमको रखना है। मात्र ज्ञान से और मात्र ध्यान से और मात्र आध्यात्मिकता से पेट नहीं भरता, पेट भरने के साथ हमें ज्ञान अध्यात्म योग तभी अच्छा लगता है जब हमारा पेट भरा हो। सुबह हमें नाश्ता ना मिले तो हम यहां बैठेंगे नहीं कोई भी। यही सत्य है, यही सत्य है। और हम सारे कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमको हमारा पेट भरा हो, सात्विक फूड हो, यही हमको अपने आचरण में लाना है कि हमको प्रकृति के पास जितना हो सके, मैं सबसे बात कहता हूं, जितना हो सके अपने आचरण में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेती में, अपने कर्म में, अपने ऑफिस में प्रकृति के पास रहिए। कोई रूल मत बनाइए, प्रकृति के पास रहिए, जितना जिससे संभव हो सके प्रकृति के पास रहिए। जिस सीजन में जो ईश्वर ने खाने को दिया है, जो फल दिया है, जो सब्जी दिया है, उसको खाइए पीजिए, जो अन्न दिया है उसको खाइए, अपने को स्वस्थ रखिए। और इसी प्रकार से खेत के अंदर में, आपको खेत के अंदर में जो प्रकृति ने दिया, जहां समस्या है वहीं समाधान है। हम समाधान जब बाहर से लाके वहां पर लाते हैं तो वो समस्या का निराकरण नहीं होता। अभी मैडम बात कर रही थी उत्तरांचल की बिच्छू घास की, ऊपर बिच्छू घास है, नीचे उसकी दूसरी घास होती है। बिच्छू घास आपको यहां डंग मारे, पूरे में आपकी जलन हो जाएगी, और ठीक बिच्छू घास के नीचे एक प्लांट होता है जिसको आप निकाल करके उसको रगड़ देंगे, आपकी पूरी जलन शांत हो जाएगी। मैं जानती हूं प्रकृति ने जहां समस्या दिया है वहीं समाधान दिया है। तो हम जब समाधान बाहर से ला करके, कर्नाटक का समाधान हम उत्तर प्रदेश में लगाएंगे तो नहीं सफल होंगे, हरियाणा का समाधान हम बंगाल में लगाएंगे तो नहीं सफल होंगे। हम सफल तब होंगे जब वहां का समस्या का समाधान वहीं से खोजेंगे, तो हम समस्या का समाधान भी पाएंगे और हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी बस 5-7 मिनट आपसे और बात करते हैं, इसके बाद फिर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग आध्यात्मिक खेती और प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं, विचार विमर्श में, हम चाहे यौगिक जैविक खेती कहें, यौगिक खेती कहें, शाश्वत खेती कहें, प्राकृतिक खेती कहें, ये सब सिनोनिम्स हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तुरंत पूरा करता हूं, आप जितना समय देंगे मैं उतना समय उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो एक तो ये 2-3 बातें कहनी थी। दूसरी बात की हम लोग कई बार नारा देते हैं, जैसे भूमि संरक्षण में, चूंकि जल रिसोर्सेज मैंने काम किया, तो खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। इसी प्रकार से कहता है कि गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में। तो आप अपने परिवार में जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके पैसे को लाइए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उसी हिसाब से काम करना है हमें। प्राकृतिक खेती में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार कहता हूं, अध्यात्म का तो पुट उसमें आना ही आना है। बिना अध्यात्म के पुट के, बिना नियत के पुट के, बिना धरती माँ को प्रणाम किए, बिना बीज को खाद को प्रणाम किए, जो भी चीज हम डाल रहे हैं उसके अंदर में उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो हमको सबको प्रणाम करना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है। लेकिन प्रकृति ने जो दिया उसको बना के रखना है। क्या हमारी, हम लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं, कार्बन कंटेंट कम हो रहा है, 0.2 से 0.3% पे आ गया, जबकि उसको होना चाहिए 0.8 से ऊपर। तो एक तो हमको बस ध्यान रखना है कि जो भी प्रकृति में जहां जो पैदा हो रहा है उसके जो अन्न फल हमको ईश्वर ने दिया है खाने के लिए उसको हमें खाना है, रेस्ट हमको उसी खेत के अंदर में उसको समाहित करना है। जितने भी फसल अवशेष हैं उनको हमको वहीं पर समाहित करना है, जिससे कि हमारे सॉइल की फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रक्चर हमारा उसका मेंटेन रहे। अगर फिजिकल हेल्थ और फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, और उसका एक ही पैमाना है कि आपके खेत में केंचुए कितने हैं, एक ही पैमाना है, थंब टेस्ट है। आप अपने खेत में यदि केंचुए लौट रहे हैं, केंचुए हैं, तो आपका मान के चलिए कि खेत अच्छा है। आप सब जानते हैं एक केंचुआ 10 से 12 हजार बच्चों को जन्म देता है, 10 से 12 दिन के अंदर जीवन साइकिल है, और मरने के बाद भी केंचुआ जो है वो कंपोस्ट के रूप में उसी खेत के अंदर में समाहित होता है, और वो प्राकृतिक हलवारा है। हम लोग कहते हैं कि वो ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और वो वर्मी वाश को कंप्लीट करता है, और वो वाटर एब्जॉर्प्शन को पूरा का पूरा करता है। हम सब बाकी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, प्राकृतिक खेती के जो अवयव हैं, जीवामृत है, बीजामृत है, घनामृत है, दशपर्णी अर्क, सब हम जानते हैं। लेकिन जो मैंने फील्ड में महसूस किया कि शायद जितना इफेक्ट हम प्रोड्यूस में चाह रहे हैं, जो बार बार आप सहमत होंगे, आप तो बहुत उसमें ज्ञान है, प्राकृतिक खेती में जो किसान प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जितने ही सारे कंटेंट हैं इनको होलिस्टिक रूप में लेकर नहीं जा रहे हैं। अभी जो मेरा अपना अनुभव है कि ज्यादातर लोग उसमें जीवामृत का खाली उपयोग कर ले रहे हैं या बीजामृत का उपयोग कर ले रहे हैं, और ये इसकी पूरी एक विधा है। अगर घनामृत से स्टार्ट करके घनामृत डालेंगे, फिर उसके बाद में बीजामृत डालेंगे, फिर उसके बाद जब जीवामृत के सारे एप्लीकेशन करेंगे, फिर दशपर्णीय का एप्लीकेशन करेंगे, फिर अग्नेयास्त्र है, नीमास्त्र, और ये एक एज ए होलिस्टिक अप्रोच के रूप में किसान यूज नहीं कर पा रहा है, ना वो शायद बना नहीं पा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो होलिस्टिक रूप में करेगा। तो मेरा तो अपना मानना यह है कि प्राकृतिक खेती के अंदर में जो प्रोड्यूस की जो बात कहते हैं वो गलत है। 3 से 4 साल के अंदर में प्राकृतिक खेती में भी प्रोड्यूस उसी लेवल पर आ जा रहा है जिस लेवल पर हम केमिकल फर्टिलाइजर से प्रोड्यूस की क्वांटिटी ले रहे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और इस साल भी मैंने अभी काफी एरिया में अपने यहाँ प्राकृतिक खेती के अंदर में काम कराया है, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं जो आप देखना चाहें देखें। अंत में मैं कुछ बातें और 2-3 बात करके खत्म करता हूं। एक अनुरोध के साथ में, ब्रह्म कुमारी के बहुत बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं कहना बस एक चाहता हूं कि आपके हर सेंटर में, बहुत हर जनपद में बहुत से सेंटर काम कर रहे हैं, कृपया आप आइए हम लोगों के साथ मिलकर के एक गांव का आप चुनाव करिए, और एक गांव में वहां चुनाव करके अपने सेंटर की बहनों को वहां लगाइए। हम लोग कंधे से कंधा मिला करेंगे, और इस यौगिक खेती के मॉडल को अगर हम जनपद में चरितार्थ कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका रिप्लिकेशन बहुत स्पीड से होगा और हम सबके लिए लाभकारी होगा। अंत में अपनी बातों को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोड्यूस, प्रोसेस, प्राइस, उसके साथ मैं कहूंगी प्रैक्टिकल अप्रोच टूवर्ड्स द नेचर। समस्या का समाधान जिस स्टेट में है, जिस जगह है, वहीं पर ही है। जहां तक खेती का सवाल है, एक जगह का समाधान दूसरी जगह काम नहीं करता, यही भाई साहब का कहना था। भाई साहब, हम आपको भी कहेंगे कि हमारी ये विंग ऑलरेडी काफी गांव को अडॉप्ट कर रही है और मॉडल विलेजेस बना रही है। राज ऋषि विलेज के प्रोजेक्ट्स के नाम से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑलरेडी, और न सिर्फ हम उसमें खेती किंतु महिला सशक्तिकरण, बच्चों का ग्रोथ, पूरा वातावरण, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारी विंग लास्ट ईयर से कर रही है। हम हमारे इस सत्र की अध्यक्षता की और आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबसे 1 मिनट सभी खड़े हो जाए। थैंक यू। अपने पड़ोसी के सामने देखिए, जो आपके पड़ोसी हैं, बिल्कुल उनके साथ शेक हैंड कीजिए, उनका परिचय लीजिए और गले लगिए, और कहिए धरती हमारी माँ और हम आपस में भाई बहन। अब एक दूसरे को शाबाशी दीजिए और उनकी पीठ को अच्छे से थपथपा दीजिए, एक्यूप्रेशर कर दीजिए और निंद्रा रानी को हटा दीजिए। हमारे बीच हमारी अध्यक्ष आ रही है, उसके पहले हमारा तन और मन जागृत होना बहुत जरूरी है। इस सत्र की हमारी अध्यक्षा है आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी। आप सोनीपत से हैं, कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। अगर आपके लिए कहें तो ज्ञान की ज्योति से जग को रोशन करती हैं आप। शब्दों में जैसे शांति की गंगा बहती है, सेवा साधना और स्नेह की मिसाल बनकर बीके लक्ष्मी दीदी हर दिल में बसती है। बीके लक्ष्मी दीदी हर दिल में बसती है। 1964 से आध्यात्मिक सेवा से जुड़ी हुई हैं आप। एमएससी एवं बीएड शिक्षित पूर्व में व्याख्याता रही हैं आप। वर्तमान में सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निर्देशक एवं राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान फाउंडेशन की आप क्षेत्रीय संचालिका हैं। तनाव प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक सोच, स्वप्रबंधन, नेतृत्व एवं मूल्य शिक्षा जैसे विषयों पर आपका प्रभुत्व है। 20 वर्षों से अधिक आप इन विषयों पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, अस्पताल एवं सामाजिक संस्थाओं में प्रेरणादायी व्याख्यान देती हैं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं, तो आपका स्वागत है, अभिवादन है। अपने अनुभवी बोल से हमें लाभान्वित करें आदरणीय लक्ष्मी दीदी।
ओम शांति। एक बार सभी मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के बहुत ही विद्वान वक्तागण एवं सभा में उपस्थित कृषि जगत से जुड़ी हुई महान विभूतियां एवं अन्य भाई बहनें, आज के विषय को आध्यात्मिक चेतना से कृषि में परिवर्तन हम देख रहे थे। दो विशेष रूप से इसके अंदर चीजें हैं, आध्यात्मिक चेतना और कृषि में परिवर्तन। तो आज के विषय को साइंटिफिक रूप से हमारी डॉक्टर सुनीता पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, और उसके साथ साथ एक कर्म योगी किसान के रूप में हमारे बाला साहब भाई ने बहुत ही सुंदर अपने अनुभव रखे, और हमारे दोनों ही विशेष मेहमान डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने और डॉक्टर अवतींद्र मिश्रा जी ने बहुत सुंदर अपने अनुभव युक्त विचार रखे, और समाधान भी हमें साथ साथ बताया बहुत सुंदर। क्योंकि आजकल जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ तो जाएं, लेकिन प्राइस, तो उसका भी बड़ा अच्छा समाधान बताया कि फार्मर्स के लिए फार्मर फैमिली बनाई जाए, इसी तरह का और भी मंथन किया जाए, तो उन चीजों का समाधान हम सहज ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक चेतना को ही अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब ये आध्यात्मिक की बात आती है तो वैज्ञानिक थोड़ा सा सोचते हैं कि ये तो पता नहीं कौन सी बला है और हम इसको कैसे पार कर पाएंगे। तो कल से हम सुन रहे हैं ये बहुत सहज और नेचुरल है, ये हमारी अपनी चीज है, अपना ही स्वरूप है। अध्यात्म माना मैं, आज का जो सुबह का लेसन था योग शिविर का, उसमें आपने सुना कि मैं एक चेतना हूं, मैं एक शक्ति हूं। तो आत्मा का अध्ययन, खुद को जानना, और मेरे पिता परमात्मा हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, और संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब हमारे परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक पिता के बच्चे हैं। तो ये जब भाव मन के अंदर आता है, इसको कहते हैं अध्यात्म, जो धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म माना ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, हम एक सीमाओं में बंध जाते हैं, लेकिन अध्यात्म हमें सब धर्म की दीवारों से ऊपर उठा देता है कि हम सब एक हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और ये हमारी नेचुरल चीज है, ये कोई अलग जीने का ढंग नहीं है, लेकिन यही जीवन जीने का ढंग है कि हम आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखते हुए व्यवहार करें। और जब ये आध्यात्मिक चेतना जागती है तो कृषि में कैसे परिवर्तन आता है, क्योंकि कृषि में दो चीजें हमारे सामने हैं, एक कृषक है और दूसरा कृषि करने की पद्धति है। तो उन दोनों चीजों पर ही बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कृषक, किसान या जमींदार कहें, जो किसानों से खेती कराते हैं। तो उनके जीवन में जब आध्यात्मिक चेतना होगी तब वो प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, संवेदनाएं हैं, उनको समझ पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म ही वो शक्ति है जिससे प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति का गुण पैदा होता है। और ये धरती माँ के प्रति जो प्रेम है ना, हम माँ तो बोलते हैं लेकिन जो माँ के प्रति भावना होती है वो भावना ही खत्म हो गई है, और इसलिए जो लालच की वृत्ति है वो बढ़ती चली गई। तो जब एक किसान आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है, ईश्वर को याद करता है और सबको आत्मा समझता है और प्रकृति से भी अपना प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करता है, तो सबसे पहले उसकी आंतरिक शक्ति जागती है, उसके अंदर दिव्य गुण पैदा होते हैं, और जिन दिव्य गुणों के कारण वो प्रकृति से प्रेम करता है, क्योंकि प्रकृति जो हमें सदा देती ही देती है और उसके बदले में कुछ नहीं लेती है, कभी कोई डिमांड नहीं करती है, उस प्रकृति के प्रति, धरती माँ के प्रति जो दिल की भावनाएं हैं वो किसान के अंदर पैदा होती हैं। और जब वो पैदा होती हैं तो वो नीड और ग्रीड के अंतर को समझ पाता है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मदर अर्थ हैज सफिशियंट फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर मैंस ग्रीड। धरती माँ इस धरती के सब पुत्रों को सब कुछ दे सकती है, इतने संसाधन हैं उसके पास, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। आवश्यकताओं की पूर्ति तो किसी भिखारी की भी हो जाती है, लेकिन लालच की पूर्ति किसी बादशाह की भी नहीं हो सकती। तो जब एक किसान इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, वो सवेरे सवेरे उठ करके भगवान को याद करता है, आत्मचिंतन करता है, अपनी फसलों को भी वो ऊर्जा देता है, तो उसके अंदर वो जो प्रेम जागृत होता है उससे वो प्रकृति के साथ जुड़ता है, और तब उसके अंदर का जो हिंसा भाव है वो खत्म हो जाता है, उसे धरती माँ के प्रति रहम पैदा होता है, वो शोषण और दोहन की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है कि बस केमिकल डाल डाल के ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें एक वो छोटी सी बात याद आती है कि एक बार एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, एक राजा बड़ा लालची था, उसके राज्य में किसी ने खबर पहुंचा दी कि एक व्यक्ति के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो राजा ने कहा वो मुर्गी तो मुझे मिलनी चाहिए। और अगले ही दिन उस लालची राजा ने सोचा कि मैं इसके अंदर शायद वो सोने के अंडे भरे हुए और एक ही दिन मार के इसको सारे अंडे प्राप्त कर लूंगा। तो इसी तरह की सोच आज खेती के अंदर भी होती जा रही है, और ज्यादा केमिकल, और ज्यादा गेहूं की किसी भी चीज की जो पैदावार है और ज्यादा होगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अपनी माँ को जब जहर पिलाएंगे तो हमें उससे प्राप्ति क्या होगी। तो इसलिए कृषि के अंदर ये परिवर्तन किसान के माध्यम से, उसकी सोच के माध्यम से आता है। और उसके साथ साथ जब एक किसान इस अध्यात्म जीवन शैली को अपनाता है, प्राकृतिक खेती करता है, शाश्वत योगिक खेती करता है, तो उसका अपना जो चरित्र है, अपनी जो सोच है, अपनी जो व्यसन और बुराइयां हैं वो खत्म होती हैं। हम कहते हैं किसान की आमदनी कम हो जाती है, लेकिन जब एक किसान योगिक जीवन पद्धति अपनाता है तो उसके जीवन से व्यसन छूट जाते हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, जिस पर कितना सारा उसका खर्चा होता है, वो बुराइयां उसके जीवन से छूट जाती हैं, और वो भी तो बचत होती है। कितना सारा धन का अपव्यय उन दुर्व्यसनों के कारण होता है, लेकिन जब एक किसान आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाता है तो उसके जीवन की बुराइयां खत्म होती और उससे धन की भी बचत होती है, और उसके साथ साथ वो जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करता है और जीवन में संतुष्ट रहता है। एक होता है थोड़ा प्राप्त करके भी संतुष्टता का जीवन, और उसके साथ साथ जब कृषि के अंदर वो आध्यात्मिक साधनों को अपनाता है कि जो है ना, जो अपनी स्वनिर्मित जो खाद है, जो भी पद्धति अभी हम सब ने सुनी, और खेतों में बैठ करके योग करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और वो जो ईश्वरीय शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, खेती के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, खाद की, बीज की, पानी की, वो सब है, मगर उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो ऊर्जा है जो वनस्पति को मिलती है वो है योग की शक्ति, मेडिटेशन की पावर, वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो जब फसलों के ऊपर उसका छिड़काव होता है प्रतिदिन, तो सचमुच में वो फसल कितनी प्रफुल्लित होती है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाती है, उसके अंदर जो सात्विकता है, गुणवत्ता है, वो बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसी शुद्ध भावना से किसान खेती करता है तो जो भगवान की दुआएं हैं वो प्राप्त होती हैं, और जो परमात्मा की दुआएं प्राप्त करता है उसे कभी धन का अभाव भी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो दाता है, विधाता है। अगर किसान सचमुच में, क्योंकि हजारों किसान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक पूरे दिल से लगे हुए हैं और उनकी कभी शिकायत नहीं होती कि हमें प्राप्ति कम हुई है, क्योंकि जो ईश्वरीय दुआएं हैं उस धन के अंदर वो भर जाती हैं और वो अनेक गुणा काम करता है। तो इसलिए हमें इस चीज को दिल से स्वीकार करना होगा कि प्रकृति हमारी है, ये प्रकृति के पांचों तत्व, इनके प्रति प्रेम और सद्भावना, और ये सब चीजें हम अपने शास्त्रों में भी देखते आ रहे हैं। अयोध्या श्री राम जी की भूमि से हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। श्री राम जी जब वन में जाते हैं तो धरती माँ देवी का रूप बना करके आ जाती है, आप सबने सुनी होगी ये बातें, और देवी के स्वरूप में वो उनको नमन करती है और वो पूछती है कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि बस मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं जिस रास्ते से चल के आया हूं उसके कांटे बुहार देना। उसने कहा आप तो चल करके आ चुके, अब कांटे बुहारने की क्या जरूरत है। कहा नहीं, इसी रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा। तो कहा क्या आपका भाई इतना कमजोर है कि वो उन कांटों से विचलित हो जाएगा। कहा नहीं, वो तो वज्र से भी कठोर है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि मेरा भाई इस रास्ते से, श्री राम इस रास्ते से गए हैं, तो उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। तो ये वार्तालाप धरती माँ के साथ है, धरती माँ के साथ। दूसरी तरफ हम श्री कृष्ण को अगर हम देखें तो श्री कृष्ण जी जब छोटे होते हैं और प्रथम बार धरती पर पांव रखते हैं, बाहर चले जाते हैं खेलते हुए, और मिट्टी और धरती माँ खुश हो जाती है उनको देख करके, कहती है वाह आज आपके दर्शन हुए, और फिर वो प्रसाद के रूप में मिट्टी अपने मुंह में डाल लेते हैं। तभी फिर बाद में यशोदा मैया कान पकड़ के कहती है मिट्टी क्यों खाई। तो माना इतना प्रेम धरती माँ से, वो तो हमारे सब देवी देवताओं के अंदर भी है, तो ये तो हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति है। तो हमें अपनी धरती से, अपनी प्रकृति से इतना प्रेम करना है, और अपने जो वनस्पति है, जो हमारे किसान भाई बहन है, वो कैसे खेतों में उनसे बातचीत करते हैं, उनसे एक ऐसा कनेक्शन आपस में बनाते हैं। तो उसका भी हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं रामायण के अंदर, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो जैसे ही वो ला करके उस पहाड़ को रखते हैं तो सुग्रीव फटाफट दौड़ता है उसको तोड़ने के लिए, कौन सी है वो बूटी। उन्होंने कहा ठहरो, ऐसे नहीं। और सुषैण जी उस जड़ी बूटी के सामने प्रार्थना करते हैं पहले कि आज मेरे रोगी को आपकी बहुत आवश्यकता है, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझे आपके कुछ पत्ते चाहिए और मैं उससे वो दवा तैयार करूंगा। तो ये प्रकृति के साथ प्रेम बातचीत, ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति है, तो इसलिए उस चीज को अगर हमारे किसान भाई समझ करके विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय बना करके चलेंगे तो हम सचमुच में वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी उस प्राचीन पद्धति की तरफ, उस नेचुरल खेती की तरफ जाएंगे और हमारा ये भारत देश फिर से समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होगा और हमारी ये धरती माँ फिर से सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम बन जाएगी। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यात्म विवेकपूर्ण भावना है और जब इस विवेक युक्त भावना से हम प्रकृति को जोड़ते हैं तब प्रकृति सहयोग के चमत्कार दिखाती है। यही इस सत्र का निचोड़ है, कृषि अर्थात प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यापार। और प्रकृति के साथ जब हम मित्रता जोड़ते हैं, बातें करना सीखते हैं, तो प्रकृति हमारी मित्र बन, हमारी माँ बन, हमारी सखी बन हमें सहयोग देती है। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम 2 मिनट प्रभु पिता की याद से इस सत्र के समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तेरी छाँवों में जीना सीखा, तेरे आंचल में सुकून मिला, हर सांस में तेरा एहसान है, प्रकृति माँ तेरा उपकार बेमिसाल है। तेरे वक्षों की छाया में सुकून पाते हैं हम, तेरे फूलों की खुशबू से महकते हैं हर दम, तेरे बिना अधूरा जीवन, तू ही तो है हमारा अधर। प्रकृति माँ तेरा उपकार बेमिसाल है, प्रकृति माँ तेरा उपकार बेमिसाल।